نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 سے 263 تک کریں گے. پہلے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ. اَلَمْ اَ کیا لَمْ نہیں ترا تم نے دیکھا. را دیکھنا ہوتا ہے تا کے ساتھ آ جائے تو تم نے. اِلَ الَّذِي ہم الَّذِينَ پڑھتے رہے ہیں. الَّذِي اسی کا واحد ہے. طرف الَّذِي اس شخص کے حاج جس نے حجت بازی کی یعنی بحث کرنا جھگڑا کرنا. ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. فی ربی اس کے رب کے بارے میں. ان کہ آتاہ اللہ عطا کی ہو اس کو اللہ نے. الملک بادشاہت عطا کی اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت. اذ جب قالا کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے. ربی یا ربی رب میرا یا کے پر زبر. الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے و یمیت اور موت دیتا ہے. قالا کہا انا میں احیی میں زندہ کرتا ہوں و امیت اور میں موت دیتا ہوں. قال ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے. ف پس ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأتی لاتا ہے کیونکہ آگے بھی ہے تو آتا ہے نہیں لاتا ہے. آتا تھا نا دینے کا معنی تو یہاں پہ بی چونکہ آ گیا تو لانے کا معنی آ گیا. اتا یاتی ورنہ آنے کا مطلب ہوتا ہے. لاتا ہے وشم سورج کو من المشرق مشرق سے. فأتی بہا پس تم لے آؤ بہا اس کو من المغرب مغرب سے. فبوہیتا تو مبہوت ہو گیا یعنی حیرت زدہ ہو گیا. الذی وہ کفارا جس نے کفر کیا. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو. او یا کلذی اس کی طرح یعنی اس شخص کی طرح. مر جو گزرا علی اوپر قریت ایک قریا کے ایک بستی کے. و اس حال میں کہ ہیا وہ ہیا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے قریا کی طرف اسی لیے ہوا نہیں ہے ہیا ہے. ہیا جو ہے وہ مونس ہے کیونکہ کریا مونس ہے. خاویتن گری ہوئی تھی. خاویہ گری ہوئی تھی. علی عروشیہا اوپر اپنی چھتوں کے. یہ عربک میں ایک محاورہ بھی بولا جاتا تھا خاویتن علی عروشیہا یعنی جب کوئی چیز بالکل ہی گر جائے ڈھہ جائے. عروش یعنی چھت کمرے کی بھی چھت کو کہہ سکتے ہیں عرش بھی اسی طرح. قالا اس نے کہا انا کس طرح کیسے یحیی زندہ کرے گا ہادی اس کو اللہ تعالیٰ بعد موتی ہے اس کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ تو مار دیا اس کو اللہ نے. مئات عامن مئ سو عام سال. ثم پھر بعثہ اٹھایا ہو اس کو. قالا فرمایا کم کتنا لبثتا تم ٹھہرے ہو. قالا اس نے کہا لبثت میں ٹھہرا یومن ایک دن او بعد یوم یا کچھ حصہ دن کا. قالا فرمایا بلکہ لبثتا تو ٹھہرا مئات عامن سو سال. فانظر پس دیکھ الی طرف طعامی کا کھانے کے اپنے. و شرابی کا اور پینے کے اپنے یعنی پینے کی جو بھی چیز ہے کا جو یعنی تیری یعنی اپنی. لم نہیں یتسنہ سنہ مطلب جب کوئی چیز गल सड़ जाए, खराब हो जाए, बासी हो जाए, तो खराब हुआ यतसन्ना वो। वंदुर, हा के हा एंड में है ना, तो खराब हुआ वो। वंदुर और देख, इला हिमारी का अपने गधे की तरफ, वली न जाला का और ताकि हम, नून शुरू में आया हम, जाला बना दे का तुझको, आयतन एक निशानी, लिन्नास लिए लोगों के, वंदुर और देख, इला जब वंदुरू आएगा तो फिर क्या मतलब होगा, देखो सब देखो, यानी सबको कहा जा रहा है, वंदुर एक को कहा जा रहा है, देख, इला तरफ, अल इजाम अजमा हड्डी को कहते हैं, इजाम हड्डियों को, कैफा किस तरह, नुन शिजुहा नून शीन जई से, हम उठा देते हैं उनको, अनशा उठाना होता है ना, अनशा तो यानी उन हड्डियों को किस तरह जोड़ देते हैं। सुम्मा फिर, नक सूहा किसवा, तो हुन्ना पढ़ा था ना हमने पहले, तो उसी लफ्ज से समझ लें कि हम पहनाते हैं उनको, हम पहनाते हैं हा उनको, यानी किनको, हा की जमीर किस तरफ जा रही है, पिछला जो इसम आता है ना सबसे पहले उसको देखते हैं, यानी अजाम की तरफ। लहमन गोश्त, फलम्मा फिर जब, तबय्यना वाजे हो गया, लहू लिए उसके, खाला कहा, आलमू मैं जान गया, यालमू होता तो फिर क्या माना होता, और नालमू होता तो फिर क्या माना होता, और आलमू है तो फिर क्या है, तालमू हो तो फिर क्या होगा, ये सब आपको आने चाहिए अब तक ना। तो डिफरेंट इसमें शुरू में लगा के देखें और फिर देखें आपको आता है ये। अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर, ऊपर हर चीज के कुदरत रखने वाला है। वाहिद काला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, अरिनी, नी है या साकिन है, अरिनी दिखा, रहा होता है ना देखना, तो अरि तू दिखा, नी मुझको, कई फा किस तरह, तो ही तू जिंदा करेगा या जिंदा करता है, मुजारे है ना, तो प्रेजेंट में भी माना हो सकता है और फ्यूचर में भी। अल मौता मुर्दों को, काला फरमाया, अवलम क्या भला नहीं तो मिन तुम ईमान रखते, काला कहा, बला क्यों नहीं, वलाकिन लेकिन, लिया तुमा इन्ना ताकि मुतमईन हो जाए, कल्बी मेरा कल्ब मेरा दिल, काला फरमाया, फखुद बस ले लो, अरबात मिनत तईर चार मिनत तईर परिंदों में से, फसुर हुन्ना फिर मायल करो उनको, यानी अपने से मानूस करो उनको, इलई का अपनी तरफ, सुम्मा फिर, इजाल रख दो या डाल दो, आला ऊपर, कुल्ली हर जबलिन पहाड़ के, मिन हुन्ना उनमें से, उनकिन में से जो परिंदे हैं तईर हैं, वो मुअन्नस के लिए भी आता है वैसे, मुजक्कर के लिए भी तईर आता है, ठीक है। जुज़अन एक हिस्सा, सुम्मा दउहुन्ना फिर बुलाओ उनको, यतीना का वो आएंगे, अता याती मैंने अभी आपको बताया ना आने के लिए होता है ये पिछले ही उससे, तो यति वो आ जाएंगे, का तेरे पास, सायन साई होता है दौड़ना, दौड़ धूप करने के लिए भी आता है, सायन दौड़ते हुए, वालम एक था ना आलम और एक है वालम और जान लो, यानी ये एलम है, एलम कि जान लो, ये अमर है, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अजीजुन हकीम गालिब हिकमत वाला, मसलुल्लदीना मिसाल उन लोगों की, युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, कमसली का मिसाल यानी मानिंद, मसली मिसाल, हब्बतिन हब्बा हबाबा से हब दाने को कहते हैं, एक दाने की है, अम्बतत नबात, अंबत, नबातात, वैसे हम कहते हैं ना हम प्लांट्स को नबातात, तो वो भी उगते हैं ना, उनसे जो फेल बना अंबतत, तो वो इस तरह से बना, अंबतत उसने उगाई सब असनाबिला, यानी उसने हब्बा ने उगाई, उसने किसने, हब्बा ने उगाई सब असनाबिला सात बालियां, सुंबुल से है, सीन नून बालाम, रुबाई है इसका जो रूट है ना वो फोर लेटर्स पे है। फी कुल्ली सुंबल सुंबुला तिन हार, फी में कुल्ली हार सुंबुला बाली, मी अतु 100 हब्बा दाने। मुश्किल नहीं है ये, वैसे ही आपको लग रहा है, लेकिन उसी सुंबुला वाहिद है, सनाबिल उसी की जमा है, मी आ 100 आपने पहले ही देखा, हब्बा दाना अंबा तत उसने उगाए। वल्लाहु और अल्लाह ताला युदाइफु बढ़ाता है, लीमन लिए जिसके, यशा वो चाहता है, वल्लाहु वासिउन अलीम अल्लाह ताला वुसत वाला इल्म वाला है। अल्लदीना वो लोग, युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा फिर, ला युतबेउना नहीं इत्तेबा करते, यानी इत्तेबा करने का मतलब यहाँ पे क्या, नहीं वो पीछा करते, इत्तेबा होता है ना फॉलो करना, मा अनफकू जो उन्होंने खर्च किया, मन्नन मन एहसान को कहते हैं, मन मीम नून नून, मन एक वेट का भी तो स्केल होता है ना, मन कहते हैं इतने मन, तो जो एहसान होता है ना वो भी बड़ा बोझल होता है, कि जब कोई एहसान जिताता है या किसी का एहसान करना, तो एहसान जिताकर, वाला अदन और ना अजियत देकर, अजा पहले तो पढ़ा है ना आपने हैज के मामला में, लहुम लिए उनके, अजरुहुम अजर उनका, इंदा रब्बीहिम इंदा पास रब्बीहिम उनके रब के, वला खौफुन और नहीं कोई खौफ अलैहिम उन पर, वला हुम और ना वो, यहजनून गमगीन होंगे। कौलुन बात, कौल हम उर्दू में भी बोलते हैं, मारूफ अच्छी, व मग़फिरतुन और बख्शिश, खैरुन बेहतर है, मिन सदकतिन उस सदके से, यतबाउहा जैसे पीले पीछे युतबिउना आया ना, तो यतबाउहा वही बात है, यानी उसको फॉलो करे, पीछे आए उसके, अदन अजियत दुख, अजियत तो उर्दू में बोलते हैं या तकलीफ, वल्लाहु अल्लाह ताला गनीयुन बेनियाज है, हलीम हिल्म वाला है, बुरदबार है, तहम्मुल वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आज की आयात हैं। हमने पिछले हफ्ते बहुत ही प्यारी आयत पढ़ी, यानी सबसे अजीम आयत इस कुरान करीम की, बहुत खूबसूरत आयत और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आयत, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आयत समझ में आई होगी और आपने इसको बड़े शौक के साथ पढ़ा होगा और इसको आगे भी पहुंचाया होगा। उसके बाद हमने देखा था एक ये बात कि इस दीन में कोई जबर नहीं है, यानी अल्लाह ताला की शान बड़ी बुलंद है, अल्लाह ताला ने अपनी अजमत, अपना तारुफ बयान फरमाया है, अपनी तौहीद बयान फरमाई, और उसके बाद फरमाया उसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ आती तो कोई जबर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई हर कोई इस्लाम लेकर आए, हर कोई अल्लाह को पहचान के उसको मान ले, कोई जबर नहीं है, ये दोनों रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं, गुमराही का भी सबको नज़र आ गया और हिदायत भी सबको नज़र आ गई। अब जो कोई तागूत का इनकार करेगा, तागूत मैंने बताया था ऐसी हर ताकत जो इंसान को अल्लाह की इबादत से हटा के अपनी इबादत की तरफ लेकर आए, यानी ऐसी जो भी सरकश कुव्वत है अल्लाह के रास्ते में हटाने वाली है, वो कोई भी हो सकती है, वो इंसान के अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उसकी बरादरी भी हो सकती है, वो उसका जो समाज है वो भी हो सकता है, सोसाइटी जो है वो हुकूमत भी हो सकती है, वो कोई बादशाह भी हो सकता है, और जो कोई उसका इनकार करेगा ऐसी हर कुव्वत का कि मैं इसको नहीं मानता, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूं, तो समझ लें उसने बड़ा एक मजबूत कड़ा थाम लिया जिसको जो कभी नहीं टूटेगा। फिर समझ लें कि उसने एक ऐसी मजबूत चीज पे उसका हाथ पड़ गया है कि अब वो डूबेगा नहीं। समझिए ऐसे है कि कोई इंसान डूब रहा था और उसके हाथ में कोई ऐसा मजबूत चीज आ गई कि उसने उसको पकड़ लिया, और जब वो मजबूत सहारा उसने पकड़ लिया तो फिर अब डूबने का सवाल नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो ईमान वाले होते हैं उनको अंधेरों से निकाल के नूर में ले आता है, अल्लाह उनका दोस्त होता है। यानी अंधेरे किसके? अंधेरे बहुत सारे हो सकते हैं, कुफर का भी हो सकता है, शिर्क का भी हो सकता है, निफाक का भी हो सकता है, गुमराही और गुनाहों का भी हो सकता है। उनसे अल्लाह ताला उनको निकाल लेता है। और जो काफिर हैं उनके दोस्त तागूत होते हैं, वो तो उनको ये नूर की तरफ आना भी चाहें, हिदायत की तरफ आना भी चाहें, हिदायत की जरा सी कोई रोशनी उनको नजर भी आ जाए ना तो उनको वापस अंधेरों में ले जाते हैं, और वो आग के साथी होंगे ऐसे लोग जिन्होंने तागूत को अपना दोस्त बना लिया। तो जिंदगी में जरूरत क्या है कि इंसान तागूत का, हर तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान रखे। इसमें एक मिसाल मुझे याद आती है सईद बिन जुबैर की, कि हज्जाज ने जब उनको पकड़ा था, ये ताबई थे, वो बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द थे, बहुत ही नेक, बहुत ही बड़े मुहद्दिस फकीह, इल्म रखने वाले। और पता ही, हज्जाज ने बहुत जुल्म किया था, तो हज्जाज ने जब, लंबी बात है लेकिन मुख्तसर इतना बता दूं, हज्जाज ने जब इनको अपने दरबार में बुलाया था और इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और खुलफाए राशिदीन के बारे में पूछा, फिर उसके बाद पूछा था उसने कि बनू उमैया में से तुम्हें कौन सा खलीफा पसंद है, तो फरमाया जो अपने खालिक को पसंद है। पूछा इनमें से कौन अपने खालिक को पसंद है, उन्होंने कहा इसका इल्म तो उस जात को ही है, मुझे क्या पता, वही जानता है। कहता मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय, क्या ख्याल है? तो उन्होंने फरमाया था मेरी राय तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा मैं जरूर सुनना चाहता हूँ। फरमाया कि मेरी मालूमात के मुताबिक तो तुम अल्लाह की किताब के दुश्मन हो और ऐसे काम करते हो जिससे तुम्हारा रोब और दबदबा और धाक बैठ जाए, और ये अंदाज तुम्हें हलाकत की तरफ ले जा रहा है और ये तुम्हें जहन्नुम में धकेल देगा। और हज्जाज ने जब ये बातें सुनी थी, इसने बहुत सारे उलमा को कत्ल किया था, बहुत सारे ताबईन को कत्ल किया था, तो आग बगोला हो गया, कहने लगा अल्लाह की कसम मैं तो तुझे जरूर कत्ल करूंगा। तो फरमाया तू मेरी दुनिया खराब कर देगा तो मैं तेरी आखरत बर्बाद कर दूंगा। हज्जाज ने कहा तुम अपने कत्ल के लिए बताओ कौन सा तरीका पसंद करते हो। तो फरमाया हज्जाज बल्कि तू अपने कत्ल का तरीका चुन ले, अल्लाह की कसम जिस अंदाज से भी तू मुझे कत्ल करेगा वही अंदाज कयामत के दिन तुझे कत्ल करने का इख्तियार किया जाएगा। तो हज्जाज बड़ा जालिम था, तो कहने लगा तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं। फरमाया अगर ऐसा हुआ भी तो वो माफी अल्लाह की तरफ से होगी, तू मुझे छोड़ के अपने अपने जुर्म से बरी हो जाएगा। तो हज्जाज गुस्से से आग बगोला हुआ और दरबान से कहा तलवार और चमड़े की चादर लेकर आओ, यानी वो विप जो होता है, कोड़ा जो होता है। ये सुनकर सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। हज्जाज ने पूछा तुम क्यों मुस्कुराते हो? फरमाया तो मैं तेरी जुर्रत के ऊपर मुस्कुरा रहा हूँ और तेरे मुतल्लिक जो अल्लाह का हिल्म है, बुर्दबारी है, वो देख के मुस्कुरा रहा हूँ कि अल्लाह ताला का कितना तहम्मुल है तेरे साथ। हज्जाज ने कहा जल्लाद इसे कत्ल कर दे। आपने अपना रुख ना किबले की तरफ कर दिया। फरमाया वज्जह इन्नी वज्जह तो वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाती वल अर्द हनीफ ममाना मिनल मुशरिकीन, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना वही इन्होंने भी कहा। तो हज्जाज ने कहा इसका मुंह भी किबले की तरफ से हटाओ, हटाओ इसका मुंह। तो फरमाते हैं फ़ाइना मा तु वल्लू फ़थम्मा वज्हुल्लाह, जिधर भी तुम रुख कर दो उधर अल्लाह है, मतलब अगर किबले की तरफ से फेर भी देते हो तो जिधर भी रुख करोगे अल्लाह उस तरफ है। हज्जाज ने कहा इसको ऊंधे मुंह लिटा दो, नीचे की तरफ मुंह कर दो। फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी से अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान पाक में, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में तुम्हें लौटाएंगे, इसी से दोबारा तुम्हें निकालेंगे।
इतना गुस्से में आया, कहता अल्लाह के इस दुश्मन को कत्ल कर दो, मैंने जिंदगी में कुरान की आयात इससे ज्यादा याद रखने वाला कोई देखा ही नहीं। तो इन्होंने दुआ की थी कि या इलाही मेरे बाद हज्जाज को किसी पे मुसल्लत ना करना, यानी किसी और के साथ ना ये ऐसा कर सके। तो इनके कत्ल को अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि हज्जाज को इतना शदीद बुखार हुआ, कभी बेहोश हो जाता कभी होश में आता, जब आंख खुलती थी तो चीख मार के उठता था, कहता था सईद बिन जुबैर ने मेरा गला पकड़ रखा है, वो मेरे से पूछता है बताओ तुमने मुझे क्यों कत्ल किया, फिर बच्चों की तरह रोने लगता, कहता भला सईद बिन जुबैर से मेरा क्या वास्ता, मुझे क्या, दुनिया वालों सईद को मुझसे दूर करो, इससे मुझे बचाओ, मैं मारा गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया। इसी तरह करते करते हज्जाज मर गया था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ऐसे जो अल्लाह ताला के साथ दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कैसे हो जाता है कि जैसे उन्होंने एक उरवा तिल वुस्का थाम लिया, एक ऐसा मजबूत कड़ा वो कभी नहीं टूट सकता। यानी कोई उनके साथ कुछ भी कर लेना, फिर उनका दिल मुतमईन रहता है, वो डरते नहीं है। जैसे इब्ने तैमिया को जब जेल में डालने लगे थे तो फरमाया था कि मेरी जन्नत तो मेरे दिल में है, वो तो मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे मैं जेल में हूं चाहे कहीं पे भी हूं। तो वो फिर जो ताहूत का इनकार करता है ना और अल्लाह पर ईमान लेकर आता है, ये मिसाल है उनकी कि वो उन्होंने इतना मजबूत कड़ा थाम लिया जिसको कभी नहीं टूटना, और अल्लाह ताला सुनने वाला और वो जानने वाला है किस पे क्या गुजर रही है। और आज जो हम आयात पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें भी यही बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे कलमाए हक बुलंद किया था, और ये सबसे बड़ा जिहाद होता है कि जालिम बादशाह के आगे कलमाए हक बयान करना, क्योंकि जालिम बादशाह के आगे बोलना बहुत ही मुश्किल काम है, बड़े बड़े थर थर कांपने लगते हैं, बड़े बड़े लोग बैक ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि उनका रोब होता है, उनके पास पावर होती है, वो कुछ भी इंसान को कत्ल करा दें, कुछ कर दें, जो कि नमरूद ने भी किया था। तो ये नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो मुकालमा हुआ था ना, वो है। और इसमें भी आपको यही पता चलेगा, फकद इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्का, जो तो उसने थाम लिया फिर मजबूत कड़ा, लन फिसाम अल्लाह, जो ताहूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लेकर आए ना, उसने थामा है वो मजबूत कड़ा। तो कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मजबूत कड़ा थाम लिया और जिसको नहीं टूटना, कैसे अल्लाह ताला ने फिर इनकी ताईद की, कैसे अल्लाह वली हो जाता है ऐसे लोगों का। तो ये इन्हीं आयात की मिसाल आगे दी जा रही है, एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है। फिर हम दूसरा वाक्य आज पढ़ेंगे, जिंदगी और मौत देने का, कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना अल्लाह हई और कयूम है आयतल कुर्सी में, तो अल्लाह ताला मुहयी व मुमीत भी है, ठीक है, वो जिंदा करता है और वो मारता है, और कायम रखना किसी को ये अल्लाह ताला ही का काम है। यानी मैंने आपको बताया था ना अल कयूम में, कि अल्लाह ताला ही है कि अगर किसी को जिंदा रखे, अगर अल्लाह ना जिंदा रखे तो वो कोई चीज सलामत नहीं रह सकती, कायम नहीं रह सकती। तो हम आगे देखेंगे कि जिंदगी और मौत कैसे अल्लाह देता है और कैसे अल्लाह ताला दोबारा उठाता है। दो मिसालें आएंगी, एक पहले उजैर अलैहिस्सलाम की और फिर उससे अगली फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल को हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा करता है। और उसके बाद आज के जो आखिरी टॉपिक होगा वो यही होगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और कब उसका अजर आप ले सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, किस शर्त पे आपको अजर मिलता है। हर एक खर्च किया हुआ अल्लाह के रास्ते में वो उसका अजर नहीं मिल जाएगा क्या, तो उसकी एक शर्त है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए, वो आज हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो देखते हैं आयत नंबर 258 से, अलम तरा क्या नहीं देखा तुमने, इल्लदी उस शख्स की तरफ, हाजा इब्राहिम जिसने उज्जतबाजी की, जिसने मुजादला किया, जिसने झगड़ा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अलम तरा का मतलब क्या, क्या तुमने देखा नहीं, देखा का मतलब क्या, क्या हम कैसे देख सकते हैं? ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख सकते थे, ये तो उनसे भी हजारों साल पहले की बात थी। तो जब भी अलम तरा आता है ना, तो इन आंखों से देखने का मतलब नहीं होता दिल की आंख से देखना, यानी जैसे हम किसी को कहते हैं ना, तुमने देखा आज क्या हुआ है, तो इसका मतलब नहीं कि आप उस वाकये को जाके देख रहे थे, यानी तुम्हें पता है ऐसा क्या हुआ आज। इसी तरह ये है कि पता है क्या हुआ था, जब एक शख्स ने झगड़ा किया था इब्राहिम अलैहि सलाम, और वो शख्स कौन था? वो इराक का बादशाह नमरूद था। आपको पता ही होगा कि इब्राहिम अलैहि सलाम बेसिकली बिलोंग टू इराक, ठीक है, बेबलोनिया उसको कहते थे। तो वहां पे जिस वक्त वो अपनी कौम में रहते थे, ये उस वक्त का वाक्य है जब अपने बाप के साथ रहा करते थे, उस वक्त जब इनका बाप कहा जाता है कि ये भी इस नमरूद के दरबार में बहुत बड़ी किसी पोजीशन पे था, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये पता चला कि ये एक खुदा को मानते हैं और इसको नहीं मानते नमरूद को, तो इनको बुलाया गया नमरूद के दरबार में, और वहां उनके साथ ये मुजादला हुआ था, ये जिसको कहेंगे झगड़ा हुआ या जिसको कहेंगे मनाजरा हुआ। ये याद रखिए कि पहले जमानों में जो बादशाह होते थे ना, वो कहते थे कि हम ही खुदा हैं, हम खुदा का अवतार हैं। जैसे कि फिरौन ने भी यही दावा किया था ना, अना रब्बू को मुला आला, मैं ही तुम्हारा आला रब्बू, यानी वो कहते थे हम खुदा का अवतार है, यानी खुदा हमारी सूरत में जमीन पे आया है, इंसानी शक्ल में हमारे अंदर हलूल कर गया है, हमारे अंदर खुदा ही है जो बोल रहा है, इस्तग़फिरुल्लाह। इसी वजह से सहाबे कहफ जो है वो लड़के भी निकले थे वहां से, अपने मुल्क से, क्योंकि उनके भी आगे यही था कि इसको माना जाए। नहीं, वो इतनी सरकश कुव्वतें होती थी, वो बादशाहों के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता था उस जमाने में। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज उस जमाने में नहीं है, मगर आज और कुव्वतें हैं जो ताहूत है, कई निजाम है जो ताहूत है, जो कहते हैं बस हमें मानो, कलमा अल्लाह का नहीं पढ़ना, हमारा कलमा पढ़ो, जो हम कहेंगे वो सही और जो हम कहेंगे वो गलत, ठीक है। तो हमारी हमारे पर ईमान जरूरी है। तो उस वक्त नमरूद जो है, ये इराक के बादशाहों का लकब होता था, जैसे फिरौन मिस्र के बादशाहों का लकब था। तो जब नमरूद ने बुलाया इब्राहिम अलैहि सलाम को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये जो आज के आप इंशाल्लाह ताला वाकयात पढ़ेंगे ना, तीन तीन स्टोरीज हैं, और ये आपने जरूर शेयर करनी है अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, इसलिए कि बच्चों को स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये बड़ी मजे की भी स्टोरीज हैं और समझ में आने वाली हैं बहुत आसानी से। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, और किस बारे में झगड़ा हुआ? फी रब्बी ही, उसके रब के बारे में, और कोई झगड़ा नहीं था, अल्लाह के बारे में झगड़ा था। आज ऐसे झगड़े होते हैं जी, आज मुसलमानों में भी ऐसे झगड़े होते हैं, क्योंकि मुसलमान घरों में भी रब के बारे में आज बाज जगह पे शकुक व शुभात है, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे, लेकिन अकल को पलटते हुए देर नहीं लगती। तो आज ऐसे मुनाजरे घरों में होते हैं, मुसलमानों की मजलिसों में होते हैं, लोग डिनाई करते हैं अल्लाह ताला की जात को, अल्लाह के वजूद को। एथीज्म जितना फैल रहा है ना आज, शायद पहले कभी भी नहीं था, इस कदर ज्यादा एथीज्म हो गया है, और इवन मुसलमान मुमालिक में, और यानी खुदा की जात का ही इनकार कर देना। तो जब यहां पे भी क्या हो रहा है कि उसने झगड़ा किस बात पे किया? अल्लाह ताला के बारे में, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, के अल्लाह ने अता कर दी इसको बादशाहत, इस वजह से झगड़ा था। यानी जब बादशाहत मिल गई ना इस, और वो दी भी किसने? अल्लाह ने, तो उसी के बारे में झगड़ने लगा। और होता ऐसे ही है, ये इंसान को जब बादशाहत मिल जाए, पावर मिल जाए, पैसा मिल जाए, या ऐसी कोई भी जो अल्लाह ताला बड़ी कोई ऐसी नेमत दे दे उसको, कोई ओहदा मिल जाए, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको संभाल सके। अक्सर लोगों के लिए ये चीजें अल्लाह से दूर करने का सबब बन जाती है, इसीलिए तो माल की बाज जगह पे आप देखें बड़ी मुजम्मत आई, क्यों? क्योंकि माल अक्सर लोगों को अल्लाह से दूर कर देता है। आप नहीं कोई देखेंगे कि कोई बहुत बड़ी मलिका या कोई बहुत बड़ी बहुत अल्लाह वाली है, ये एक मलिका जुबैदा ही थी, लेकिन अदरवाइज आप देखें जो एलीट क्लास होती है किसी भी मुल्क की, एलीट क्लास की जो खवातीन होती हैं, आप कोई देखते हैं उनके अंदर शाज़ो नादर कभी आप किसी को देखेंगे जो दीन वाली, वरना ज्यादातर क्या आप पे से बाहर ही निकली होती हैं जो बेगमात होती हैं। वो क्या चीज उनको निकालती है? वो गरूर, वो तकब्बुर की हम बड़ी चीज है। तो जो बादशाह है उसके तो आप क्या ही बात करेंगे, तो बादशाह है तो जाहिर है उसका तो दिमाग कहाँ आसमानों पे, कि मेरे कहने की वजह से कुछ भी हो जाता है। और ये चीजें, ये जो पावर है ना, इसका एक नशा होता है और ये रास नहीं आती हर एक को, इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर होता है कि उनको ये चीजें ना मिले। इंसान ख्वाहिश तो बड़ी करता है कि मुझे पावर मिल जाए, मुझे ओहदे मिल जाए, मुझे मैं बड़ा कोई आदमी ऐसा मालदार बन जाऊं कि मेरे जैसा कोई हो नहीं, लेकिन ये अक्सर इंसान को उसके ईमान से ही हटा देते हैं। इतना तकब्बुर इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, इतनी बड़ाई पैदा हो जाती है, एरोगेंस आ जाती है उसके अंदर। तो अन आताहुल लाहुल मुल्क, अल्लाह का एक शिकवा है ना कि अल्लाह ने उसको बातियात दी थी इसलिए ही इतना तकब्बुर वाला हो गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया ना उसमें सूरह अलक में, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तग़ना, इंसान का मामला यह है कि वो सरकश हो ही जाता है जब वो समझता है कि मैं बेनियाज हूं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मेरे जैसा कोई है नहीं। तो जब इंसान ये समझने लगता है ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, मालदार लोगों को क्या होता है, उनको यही होता है ना कि हमें किसकी क्या जरूरत है, सबको हमारी जरूरत है, हमारे पास मांगने आते हैं। जब इंसान इस पोजीशन में आता है तो वो अक्सर सरकश हो जाता है, हदें क्रॉस करने लगता है, और यही मामला नमरूद का हुआ। अल्लाह ने उसको बादशाह दी थी तो होना क्या चाहिए था, अल्लाह के आगे झुके ना, इसका मतलब जितनी ज्यादा नेमत मिले उतना ही ज्यादा हमें अल्लाह के आगे झुकने वाला होना चाहिए। लेकिन मामला अक्सर उलट होता है, जब नहीं होता तो इंसान बहुत झुकता है अल्लाह के आगे, जितना जितना आने लगता है वो अल्लाह को भूलने लगता है। आप खुद नहीं देखते, हम लोग अपनी मिसाल ही देखें, हमें जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें इतना रोना आता है, इतना अल्लाह से हम गिड़गिड़ा के दुआएं करते हैं, इतना अल्लाह का जिक्र हमारी जुबानों पे जारी हो जाता है, उठते बैठते अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह इस मुश्किल से निकाल, और इतना खुशू आ जाता है हमारी नमाजों में, नमाज के लिए खड़े होते हैं रोना आ जाता है। लेकिन जिस वक्त हमें आसानियां मिलती हैं, कोई मुश्किल नहीं अब हमारी जिंदगी में, खुशियां ही खुशियां, नेमते ही नेमते, उस वक्त हमारी नमाजों का हाल क्या होता है, उस वक्त भी क्या उठते बैठते अल्लाह अल्लाह ऐसे ही इतना ही हम खुशू से कर रहे होते, नहीं होता ना? तो ये है कि इंसान अपनी हैसियत को याद रखे, जब उसके पास कोई नेमत आए, जितना ज्यादा वो नेमतों में बढ़े उसको शुक्रगुजारी में बढ़ना चाहिए, उसको खुशू में बढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो है ना शुक्रगुजार इंसान के लिए कैसी है, ईमान का दस्तरखान है, हर वाक्य से उसको ईमान मिलेगा, हर वाक्य से उसका ईमान बढ़ेगा, ये याद रखे, वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा। और जो नाशुक्रा है ना उसके लिए ये दुनिया, जितनी दुनिया मिलेगी वो तकब्बुर उसका और बढ़ता जाएगा, तकब्बुर की गिजा है। इद कौला इब्राहिम, जब कहा इब्राहिम अलैह सलाम ने उसे, रब्बिया यानी ये जो या ये बता रही है, मेरा रब कौन है, अल्लदी युहयी व युमीत, वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है, मेरा रब वो है। यानी उन्होंने पहली चीज जो बयान की वो थी कि जो किसी और के पास ये सिफत है ही नहीं है, किसी और के पास ये मामला नहीं है कि वो भी जिंदगी दे सकता है और मौत दे सकता है, सिर्फ एक अल्लाह की जात है जो जिंदगी और मौत देने पर कादिर है ना? कोई जिंदगी नहीं दे सकता, कोई किसी को मौत नहीं दे सकता। अब देखें जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला का वसफ लेकर आए हैं तो किस वजह से लेकर आए हैं, इसलिए कि और चीजों में कोई कुछ कह सकता है, वैसे तो हर चीज अल्लाह देता है, रिस्क भी अल्लाह ताला देने वाला है, सेहत भी अल्लाह देने वाला है, इज्जतें भी अल्लाह देने वाला है, औलाद भी अल्लाह देने वाला है, लेकिन उस सारी चीजों में से सिर्फ ये क्यों लाए? इसलिए कि कोई कह सकता है ना कि नहीं मैं भी देता हूं रिस्क, मैं खिलाता हूं किसी को, मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं, मेरी वजह से इसको इज्जत मिली है। लेकिन एक जिंदगी और मौत का मामला कोई भी ये नहीं कह सकता, किसी को जाके कहें, कोई किसी को भी मानता है कि क्या ये जिंदगी और मौत देता है, तो आप देखेंगे वो जब अपनी खुद जिंदगी पे कादिर नहीं है, अपनी खुद मौत पे कादिर नहीं है, तो वो किसी और को क्या जिंदगी और मौत दे सकता है। ये हमने बड़ी तफसील से बात की थी आयतल कुर्सी में, जो खुद मर के और कब्र के अंदर जाके पड़ जाता है वो कैसे किसी को जिंदगी दे सकता है? जो खुद जिंदा नहीं रह सकता वो किसी को क्या जिंदगी देगा? बताएं, अगर वो जिंदा वो जिंदगी दे सकता होता तो पहले अपने आप को नहीं देता? लेकिन हर एक को मौत है, हर एक को फना है, इससे पता चलता है, हालांकि मरना कोई भी नहीं चाहता। तो जब हर एक को फना है, हर एक के ऊपर मौत आने वाली है या आ गई है, और वो अपने आप को मौत से नहीं बचा सका, तो इसका मतलब है वो मौत पे कादिर नहीं है, इसका मतलब है वो जिंदगी नहीं दे सकता। जो अपने आप को ना दे सके वो किसी को क्या देगा? यहीं से उनका जो गलत बात है, जो उनका जो उनके गलत दावे हैं वो सामने आ जाते हैं। ऐसे तमाम लोग झूठे हैं, ऐसे तमाम लोग झूठे हैं जो खुदाई का दावा करें। ठीक, तो अल्लाह है जो जिंदगी देता है, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी और मौत देता है, उसने कहा तो ये कौन सा मुश्किल बात है? अना ओही वा उम्मीद, मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मौत देता हूं। उसने जल्दी से बुलाया जो दो कैदी लेकर आओ कैद खाने से, एक को सजाए मौत मिली हुई थी और एक बेचारा कुछ नहीं मिली हुई थी उसको सजाए मौत। उसने कहा जिसको नहीं मिली हुई थी उसको सजाए मौत दे दो, और जिसको सजाए मौत मिली हुई थी इसको मतलब छोड़ दो, देखो ना मैंने जिंदगी दे दी और मैंने मौत दे दी। वो समझा ही नहीं कि बात क्या हो रही है, उसने इसी चीज को समझ लिया, ये जिंदगी देना और ये मौत देना। उसने कहा यही तो, ये तो इख्तियार मेरे पास भी है, हालांकि किसी को आजाद कर देना उसको जिंदगी देना नहीं होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखें, अब यहां से पता चलता है दावत कैसे देनी चाहिए। उसी में नहीं उलझ गए कि ये क्या बात हुई, ये तो सही नहीं है, मैं तो ये कह रहा था, तुम ये करके फिर नहीं, उन्होंने बात पलट दी, उलझे नहीं उसके साथ। काला इब्राहिम, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फइन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिकि फअती बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसको मगरिब से ले आओ। आपको पता है नमरूद जो था ना, वो कहता था मैं सूरज देवता का अवतार हूं, मैं सूरज देवता, अस्तगफिरुल्लाह, सन गॉड जो है वो मेरे अंदर हलूल किया है, वो गॉड है और वो मेरे अंदर हलूल किया। अच्छा चलो ठीक है ना, तुम उसके इसीलिए तो सूरज की बात लेकर आए, सूरज देवता के तुम अवतार हो तो तुम ये करो ना कि ये तो मशरिक से, मेरा रब उसको तो मशरिक से निकालता है, तुम उलट करके दिखा दो, मेरे रब के हुक्म से वो निकलता है वहां से। फबूही तल्लदी कफर, तो वो हैरान हो गया जिसने कुफर किया, यानी नमरूद ने, हक्का बक्का रह गया। तो जब वो सूरज देवता का इंसानी पैकर होने का दावा करता था, तो अब सूरज को बता दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि सूरज तो मेरे रब का गुलाम है, मेरे रब ने उसको निजाम चलाया हुआ है, उसको एक ही सिस्टम का पाबंद कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उससे वो निकल ही नहीं सकता सूरज कि अपनी मर्जियां करता रहे। तो तुम उसका अवतार हो तो तुम उसको बिल्कुल वेस्ट से निकाल के दिखा दो। तो अब वो क्या जवाब देता है इसका? और अल्लाह ताला का जब तक इजन है सूरज मशरिक से निकलता रहेगा, जब उसका इजन होगा तो यही सूरज मगरिब से निकलेगा। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना कि ये सूरज कहाँ जाके डूबता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो डूबता है ये अल्लाह को सजदा करता है, और हर दफा ये अल्लाह से इजाजत चाहता है कि मैं निकल आऊं, तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं तो ये निकलता है। अब साइंस वगैरह को इस वक्त छोड़ दें, कैसे होता है वो तो ऐसे घूम रही है, वो तो फलां हो रहा है, साइंस की बिलीव करके नहीं, हम हदीस पे बिलीव करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया ना कि ये सूरज इजाजत लेता है, तो वो जैसे भी इजाजत लेता है, जैसे भी होता है, हमारा ये ईमान है। जिस दिन अल्लाह ताला उसको इजाजत नहीं देगा और फरमाएगा जहां से आए हो वहीं पलट जाओ, तो वो मगरिब से ही तुलू हो जाएगा और ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी होगी। इसके बाद किसी का ईमान लाना उसके कोई काम नहीं आएगा। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह हिदायत नहीं देता जालिम कौम को, यानी जो जालिम होता है। जालिम कौन यहाँ पे कहा गया? जिसको हिदायत की तलाश नहीं है, हिदायत का कोई शौक नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, कोई मंजिल पर पहुंचने का उसको उसकी जुस्तुजू नहीं है, ऐसा शख्स जालिम है। हालांकि जो ईमान है ना, हिदायत है, वो ऐसे ही हमारी जरूरत है जैसे खाना पीना हमारी जरूरत है। लेकिन जो इंसान समझता है कि मुझे नहीं इसकी जरूरत, वो जालिम ही है। हिदायत मेरी जरूरत नहीं है, तो अल्लाह भी उसको फिर हिदायत नहीं देता। अल्लाह किसी को जबरदस्ती तो नहीं हिदायत नवाज देता, हिदायत बड़ी कीमती चीज है। तो इसका मतलब है कि जुल्म से बचना चाहिए, जुल्म की वजह से इंसान हिदायत से दूर हो जाता है। अब दूसरा वाक्या क्या आता है, जो मैंने आपको बताया उजैर अलैहिस्सलाम का वाक्या, और ये वाक्या उस वक्त का वाक्या है जिस वक्त बनी इसराइल को बुख्त नसर एक बादशाह था, उसने आके इस कदर मारा था, इस कदर बनी इसराइल को, ये मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद की बात है, इस कदर ज्यादा बनी इसराइल के ऊपर जुल्म ढाया गया था, इतना ज्यादा उनको उनमें कत्लो गारत किया गया था, बैतुल मकदस की भी ईंट से ईंट बजा दी गई थी, कोई जगह नहीं थी जहां सलामत रही हो। उन्होंने 6 लाख को कत्ल कर दिया, 6 लाख को वो कैदी बना के ले गए अपने साथ, गुलाम बना दिया, और यानी बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया उनके शहर को। ठीक है, तो ये उजाड़ दिया, मकानात गिरा दिए, बस्ती वीरान हो गई। तो ये उजैर अलैहिस्सलाम जो थे, ये वहां से गुजरे। अब वो क्या देखते हैं और क्या होता है, ये हम देखते हैं आयत से। औ या, जैसे हम कहते हैं ना, ये या ये चीज़, पिछली चीज की वजाहत ये चीज कर रही है कि अल्लाह ताला कैसे जिंदगी देता है। उन्होंने फरमाया था ना, अल्लदी युहयी व युमीत, अल्लाह जिंदा करता है और मौत देता है। तो इसकी एक और मिसाल देख लो, औ कल्लदी, या उस शख्स की तरह, मर्रा आला करियतिन, जो गुजर रहा था, मर्रा या मर्रू यानी गुजरना चलना, अला करियतिन ऊपर एक बस्ती के, और ये जरूसलम की बस्ती थी, वही खाविया आला उरूशिया, और वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर। बस्ती जो थी वो तो, जो इतना पुर रौनक शहर था ना, वो इस तरह उजड़ा पड़ा था, इतना वीरान था, ऐसे था यानी छतें उल्टी हुई हुई थी, यानी मकान भी कोई बाकी नहीं रहा था, इंसान तो वहां पे दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आता था। काला, उसने कहा, अन्ना योही हादिहिल्लाहु बादा मौतिया, कैसे अल्लाह जिंदा करेगा इसको इसकी मौत के बाद, कैसे इस बस्ती को जिंदगी मिलेगी। ये नहीं कि उनको कोई शक था, अल्लाह ताला माफ करे, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन यानी एक जहन में बात आती ना इंसान की कोई चीज को देख के, कि ये इतनी बर्बाद हो चुकी है, इतनी खत्म हो चुकी है, कैसे अल्लाह करेगा इसको जिंदा। अच्छा, उनके मुंह से ये बात निकलनी थी कि फअमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ने मार दिया उसको, मौत दे दी उसको 100 साल तक, 100 साल तक अल्लाह ताला ने उनको मौत दिए रखी। अल्लाहु अकबर। सुम्मा बाअथा, फिर उठाया उसको। आप फा और सुम्मा में फर्क देख रहे हैं ना, फा जो है वो जल्दी के लिए होता है, और थुम्मा दोनों का माना हम तो और फिर तो ऐसे कर देते हैं, लेकिन आप वहां पे देखें, जब उन्होंने कहा ना, उसी वक्त फअमातहुल्लाह, उसी वक्त अल्लाह ने उनको मौत दे दी। सुम्मा, अब तराखी है इसके अंदर, डिले है इसके अंदर, 100 साल का डिले है। सुम्मा बाअथा, फिर उठाया उसको, जिंदा किया उसको, और उससे पूछा, उससे कहा, कम लबिस्ता, कितनी देर तुम ठहरे हो, यानी कितनी देर तुम सोए रहे हो, कितनी देर तक तुम मुर्दा रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया, काला लबिस्तु, लबिस्ता था फिर लबिस्तु है, दोनों में क्या फर्क है? देखिए एक जबर और पेश का ही फर्क आया ना, तो क्या माने में क्या फर्क पड़ गया, एक में तुम है एक में मैं है, ये देखें फर्क, ताकि ऊपर जबर आई तो तुम ठहरे, लबिस तू मैं ठहरा, क्या? तो ये नोट करें, यौमन एक दिन, औबादा यौम या दिन का कुछ हिस्सा, इसलिए कि जिस वक्त उनकी रूह निकली थी उस वक्त सुबह का वक्त था, और 100 साल के बाद जब वो उठे तो शाम का वक्त था, तो उनको यही ख्याल आया कि एक वो ही दिन होगा, जाहिर है सुबह को मैं सोया हुआ तो एक दिन सोया रहा पूरा, या दिन का कुछ हिस्सा कह सकते हैं। काला फरमाया, बल लबिथ मिअत आमिन, तुम तो 100 साल तक तुम ठहरे रहे, यानी तुम पड़े रहे 100 साल तक, 100 साल तक तुम मरे रहे। अल्लाह अकबर। तो जब वो इस हालत में थे तो उनको इस चीज की बिल्कुल खबर नहीं थी कि वो कितनी देर तक मुर्दा रहे हैं। मौत और नींद एक जैसी चीज होती है, हम भी जब सोते हैं तो हमारी रात को आंख खुले तो हम घड़ी देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या टाइम हुआ, 12 बजे हैं या रात के 3 बज गए, या अगर अर्ली मैं सोई थी तो अभी 11 ही बजे हैं। बस दफा हम सोते हैं तो हम कहते हैं अच्छा अभी 11 ही बजे, बस दफा पूरी रात सो लेते हैं और आंख खुलती है तो लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो सोए थे, और कितना फजर का टाइम होने लगता है, तो हमें भी नहीं पता चलता ना कि हम कितनी देर पड़े रहे। इसी तरह कयामत के दिन जब लोग उठेंगे तो आपस में एक दूसरे से कहेंगे कि हम कितना अरसा रहे, यानी कितना अरसा हम दुनिया में भी रहे और ये जो कब्र थी सारा मिला के कितना अरसा रहे, तो बास कहेंगे ज्यादा से ज्यादा ना 10 दिन हम रहे थे, यानी कंबाइन दुनिया और कब्र की जो जिंदगी थी वो सब मिला के, और बास कहेंगे नहीं कहाँ 10 दिन, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, पूछ लो उनसे जो बहुत ज्यादा यानी ये हिसाब किताब करने वाले हैं, उनसे बेशक पूछ लो एक दिन या कुछ दिन का हिस्सा रहे हैं, और वो भी कहेंगे हाँ इतना ही रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये पूरी जिंदगी क्या लगेगी हमें, जिसके पीछे हम कितना मरते हैं, कितना लड़ाइयां रखते हैं, कितनी नफरतें रखते हैं, कितने कीने दिल में पाले हैं, कितनी शिकायतें हैं दूसरों से, ये क्या इसकी हैसियत है? दिन का कुछ हिस्सा, कुरान में भी आता है अल्लाह ताला फरमाएंगे उस दिन तो कितना रहे, तो लोग कहेंगे दिन या दिन का कुछ हिस्सा, अल्लाह हम इससे ज्यादा तो हम रहे ही नहीं, कसम से हम इससे ज्यादा रहे ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो उज़ैर अलैह सलाम भी कहते हैं मतलब कि अल्लाह के नबी हैं, कि सोचे उनको कैसा फील हो रहा होगा, फीलिंग उनको यही आ रही है कि बस मैं तो थोड़ी देर ही रहा हूं, अल्लाह ताला बता रहे हैं तुम 100 साल सोए पड़े रहे हो यानी मरे रहे हो, फंजुर देखो, इला तामी का शराबी, अपने खाने पीने की तरफ, जो खाना पीना लेके निकले थे, लम्य तसन्ना, खराबी नहीं हुआ, हालांकि आप खाने पीने को आप रख दें थोड़ी देर के लिए ही, फ्रिज से बाहर ही पड़ा रह जाए सालन तो वो सीधा हो जाता है, अगले दिन आप स्मेल आने लगती है, पानी पे काई जमने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे फ्रेश था जैसे अभी लेके निकले थे। वंदुर इला हिमारी का, और अपने गधे की तरफ देखो, उसका तो पिंजर हुआ पड़ा था, गधे की तो हड्डियां भी जो थी वो गल के और चूरा चूरा हो गई थी, वो चीज जो चंद घंटों में सड़ जाती है बासी हो जाती है वो खराबी नहीं हुई, और वो जिसको गलने सड़ने में कई साल लग जाते हैं वो बस बिल्कुल चूरा हुई पड़ी है। देखिए ना दो मुतजाद चीजें हैं ना, खाना और पीने, और गधे की हड्डियां चूरा चूरा होने में कितना ज्यादा टाइम का फर्क है, एक एक दिन का बात है और एक सालों साल की बात है, कई 100 साल उसमें लगे शायद, लेकिन वो ऐसे हुआ वह वली नजअला का आयत लिन्नास, और ताकि हम बना दें तुझे एक निशानी लोगों के लिए, तुम खुद लोगों के लिए निशानी बन, यानी तुम लोगों के पास निशानी लेके जाना तो बात की बात है, तुम योर सेल्फ एक निशानी होगी लोगों के सामने, और वाकई ये निशानी बन गए थे, इसलिए कि इसके बाद जब ये यहां से गए अपने घर, वहां पे तो बस्ती ही अलग हो चुकी हुई थी, कुछ शहर का अलग ही नजारा था, लोग मुख्तलिफ थे, तो जहां पे इनका घर था वहां गए तो देखा कि इनके पोते भी बूढ़े हो चुके हुए थे। अरे 100 साल गुजर गए, पोते भी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन लोगों को ये पता था कि हमारा एक नबी होता था जो कि गुम हो गया था, और वो मिला ही नहीं किसी को भी। और देखें सुभान अल्लाह, वहां पे लोग गुजरे होंगे या लोग ने बस्ती बसी या जो भी, कभी कोई इस तरफ को आया ही नहीं, या किसी ने भी इनको देखा ही नहीं, वो अल्लाह ताला ने उनकी नजरों से छुपा के रखा। वंजुर, और देखो, इलल ऐजाम, हड्डियों की तरफ, यानी ये जो गधे की हड्डियां हो गई हैं इनकी तरफ देखो, कई फनुनशीज हुआ, किस तरह हम उठा देते हैं इनको, सुम नकसुहा लाना, फिर इसके ऊपर हम गोश्त चढ़ाते हैं। और फिर इन्होंने देखा तो अल्लाह ताला ने इनके सामने इनके गधे की जो हड्डियां थी वो ऐसे ऐसे जुड़ती चली गई, मिलती गई और जुड़ती गई, और उसके ऊपर जैसे पहनाते हैं गोश्त, तो गोश्त पहनाया गया, कोई ऐसा नहीं है जो नजर आ रहा है कि ये सब कुछ कर रहा हो, लेकिन कोई है जिसका अमरे कुन है, कुन हो जा, तो वो सब होता चला जा रहा था। आज हम बड़ी अच्छी तरह इस चीज को समझ इसलिए सकते हैं कि हमारे यहाँ ये जो मूवीज में दिखाते हैं, कार्टून्स में दिखाते हैं, कोई चीज ऐसे कोई बिखर जाता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होके जुड़ता जाता है और खड़ा हो जाता है और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, एक का बिल्कुल भेजा पाश पाश हो गया, वो बिल्कुल मर गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं उसके टुकड़े टुकड़े, और फिर वो जुड़ गए और फिर खड़े हो गए। हम जिस तरह देखते हैं ना, वो तो इन्होंने एक इफेक्ट्स दिए होते हैं उसके अंदर, लेकिन ये वाकई ऐसा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, लम्मा तबैयना लहू, जब वाजे हो गया उसके सामने, काला आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसने कहा कि अल्लाह हर चीज करने पर कादिर है। क्या वाकई ऐसा यकीन हमें है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? यानी इसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जब ये दिखाया है ना, तो एक मुर्दा बस्ती, यानी एक बस्ती बिल्कुल उजड़ चुकी है, एक बस्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कैसे ये जिंदा होगी? ये एक जहन के अंदर आई बात, तो अल्लाह ने उनको खुद मिसाल बना दिया कि तुम खुद देखो, जब तुम्हें मैं मार के और 100 साल के बाद उठा सकता हूं, तो इस तरह मैं इस बस्ती को भी उठा सकता हूं। और इसी के अंदर एक बहुत गहरी बात है, बनी इसराइल यानी मजहबी तौर पे, अखलाकी तौर पे, दीन के लिहाज से बिल्कुल मर चुके थे, दीन का जवाल आ चुका था, इस कदर गुनाहों में पड़ के, इस कदर ज्यादा अंबिया को भी इन्होंने, उनकी भी तकजीब की, और बहुत ही कहाँ तक पहुंच गए थे, और ये अल्लाह की चुनी हुई कौम थी। अब देखें, उनको ख्याल आया कि ये कैसे दोबारा, कभी हो सकता है कि ये ठीक हो, कभी हो सकता है कि दोबारा इनके अंदर इनका रिवाइवल हो। अल्लाह ताला ने दिखाया कि जो मुर्दा है ना, अल्लाह उसको जिंदा कर सकता है, ये मरी हुई कौम भी दोबारा जिंदा हो सकती है, ये मरी हुई उम्मत भी दोबारा जाग सकती है। और फिर उजैर अलैहि सलाम ने उनमें काम किया था कि तौरात भी इनसे छिन गई हुई थी, ये बुख्त नसर जो था ना, इसने तौरात का भी खत्म कर दिया हुआ था, इन्होंने अपने हाफजे से फिर तौरात पढ़ी थी और दोबारा बनी इसराइल को तौरात मिली थी, और फिर इन्होंने इनके अंदर काम किया था, और दोबारा इनके अंदर जिंदगी की लहर आई, दोबारा ये दीन की तरफ आए। तो किसी कौम की मौत होती है जब वो अपने दीन से दूर हो जाते हैं, जब तो वो कुफर और नाफरमानी और गुनाहों में पड़ जाती है, बिल्कुल जैसे उम्मत मुस्लिमा है आज। इंसान कभी सोचता है ना, कैसे कभी ये उठेगी उम्मत, और मायूसी होने लगती है, और हम सोचते हैं कैसे कभी जिंदा होगी, ये तो मर चुके हैं बिल्कुल। ये उसकी मिसाल है कि अल्लाह जिसको चाहे उठा दे, अल्लाह ताला है जो उठाने वाला, तुम क्यों ऐसे सोचते हो कि ये कभी नहीं उठ सकते? और फिर रिवाइवल हुआ था बनी इसराइल का, दोबारा जिंदा हो गए थे, यानी दोबारा जिंदा होने से मतलब समझ रहे, ये नहीं कि मार के वो जिंदा हुए थे, मतलब जैसे आज उम्मत मुस्लिमा मर चुकी है, मर चुकी है, ये इनको जूते मारते जाए, मारते जाए, मारते जाए, जो मर्जी मारे, कोई उठ के कहता नहीं है कि क्यों हो रहा है, ये जुल्म है, और मारो इनको, ये इसी काबिल है। आज इनका अखलाक, इनका किरदार, इनकी दीन, इनका मजहब, इनका क्या चीज रह गई है बाकी, अमल में किधर खड़े हुए हैं। तो आज क्या हमें भी नहीं ख्याल आता कैसे जिंदा होगी, कैसे होगी, कैसे अल्लाह इनको जिंदा करेगा। अल्लाह दिखाता है कि वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो मायूस ना होना। इसी तरह इंसानों में भी कई इंसान मर जाते हैं, उनका मर जाना पता ही क्या है, उनके ईमान की मौत। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक माँ, इतना इतना दर्द भरी उसकी कहानी थी कि उसका बेटा जो है, उसने अपना नाम बदल लिया, क्रिश्चियंस वाला नाम रख दिया, मोहम्मद उसका नाम था, स्टार्ट उसका फर्स्ट नेम मोहम्मद था, और उसने बदल के अल्लाह बेहतर जानता क्या रख लिया, और बाइबल भी घर पे ले आए। उस माँ की तड़प देखे और उस माँ का रोना देखे आप कि क्या होगा, और उसके दर्द को आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये क्या है, ये मौत है, ये रूहानी मौत है, जिस्म तो चल रहा है, अंदर मौत आ गई है। क्या कभी वो जिंदा हो सकता है? और मैंने यही आयतें पढ़ानी थी, सुभान अल्लाह, तो मैंने कहा वो जिंदा हो सकता है। आप भी सब दुआ करें ऐसे सब बच्चों के लिए जो रूहानी तौर पे मर चुके हैं, जो अल्लाह से दूर हो चुके हैं, अल्लाह उनको जिंदा कर दे, अल्लाह उन सबको जिंदा कर दे, क्योंकि अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो भी जान गए, अल्लाह हर चीज को करने पर कादिर है। किसी का बिगड़ा हुआ बच्चा है, अल्लाह उसको वापस लाने पर कादिर है। कोई बीमारी में मौत के मुंह के पास खड़ा हुआ है, अल्लाह उसको वापस लाने पर कादिर है। कोई आज बे औलाद है, अल्लाह उसको औलाद देने पर कादिर है। कोई आज गमों में परेशानियों में घिरा हुआ है, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात से उसको निकालने पे कादिर है। किसी के आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अल्लाह उन हालात को बदलने पे कादिर है। जैसे अल्लाह ताला ये मरी हुई बस्ती को दोबारा उठाने पे कादिर है, जब वो उठे तो देखा समा ही बदल गया हुआ है। वो बस्ती जिसको उन्होंने कहा था ये तो वीरान पड़ी हुई, ये कैसे जिंदा होगी, वहां पे हसल बसल है, लोग हैं, चल फिर रहे हैं, वो आबादी है, वहां पे तो कुछ और ही समा था। अल्लाह ने दिखा दिया ना, तुम कहते थे अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह देखो कैसे कर देता है। फिर लोगों को पता भी नहीं चलता अल्लाह कैसे कर देता है। तो आज ये दुआ है दिल से हर एक उस बच्चे के लिए जो दीन से दूर हो चुका, जो किसी अंधेरों में गिर चुका है, जो गुनाहों में पड़ चुका है, जो इसमें आगे निकल चुका है, अल्लाह उनको जिंदा कर दे, अल्लाह उनको वापस पलटा दे, क्योंकि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो वो कह उठे कि मैं जान गया हूं। क्या पहले नहीं जानते थे? जी जानते थे, वो अल्लाह के नबी थे, लेकिन अब जानना कैसा है? आइनुल यकीन। एक होता है इल्मुल यकीन, जैसे हमें इल्मुल यकीन है, ठीक है इल्म है, हम पढ़ते हैं, यकीनी इल्म है, लेकिन एक है आइनुल यकीन कि अपने सामने आंखों से कोई चीज देख लेना, वो जो यकीन है वो तो कहाँ कितने बुलंद पाए का यकीन है। और ये यकीन अल्लाह अपने पैगंबरों को दिया करते थे, क्योंकि उन पैगंबरों ने आगे लोगों को बताना है, और जब वो खुद कन्विक्शन के साथ बताएंगे, जो बात दिल से निकलती है ना वो ही दिल तक पहुंचती है, तो जब वो पूरे वसूख के साथ बताएंगे तब लोग भी उसी तरह से लेंगे बात को। फिर अगेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य आता है, वो पता है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी शख्सियत है, जिनको अल्लाह ताला अपना खलील कह दे, जो अंबिया के बाप हैं, जिनको हर मजहब वाले मानते हैं, यानी यहूद ले लें, ईसाई ले लें, मुसलमान ले लें, इवन हिंदुओं में भी कहते हैं जो ब्राह्मण ये कहा जाता है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से ही कहा जाता है। इतने जलील और कदर पैगंबर अल्लाह ताला ने फरमाया ना, बाज के दर्जात अल्लाह ने बाज पे किए। शुरू में हमने पढ़ा है ना, वरफा बादहुम दराजात, बाज को दर्जों में हमने बुलंद कर दिया, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वाइद काला इब्राहिम, अब ये तीसरा वाक्य सुने, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी ए मेरे रब, अरिनी तू मुझे दिखा दे, कैफा तुहयिल मौता, किस तरह तू जिंदा करता है मुर्दों को। अल्लाह ताला ने फरमाया, काला अवलम तुमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है कि मैं जिंदा कर सकता हूँ मुर्दों को। काला बला, कहा क्यों नहीं, बोला कि लिया तुम्हारा इन नकल भी, लेकिन इसलिए कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, यानी मैं अपने सामने देख लू, मेरा दिल ठुक जाए उसके ऊपर, जम जाए उसके ऊपर। ऐसे ही है, ऐसे नहीं था कि उनको कोई इसमें शक था, ऐसे ही है जैसे मैं आपको कहूँ आप मुझे दिखाएंगे कैसे आप ये खाना बनाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यकीन ही नहीं है कि आपने ये खाना बनाया, मतलब मैं देखना चाहती हूँ ना कि आप किस तरह बनाती हैं, उससे लर्न करना चाहती हूँ। तो इस तरह का वो देखना चाहते थे, उनका क्वेश्चन करना सिर्फ उसको मुशाहिदा करने के लिए था, कि आइनुल यकीन के लिए था कि मुझे सामने नजर भी आ जाए, वरना ऐसा नहीं कि उनको शक था। इब्राहिम अलैहि सलाम तो वो है जो हर हर इम्तिहान में पूरे उतरे, अल्लाह ताला ने तो खुद इनके बारे में फरमा दिया, इब्राहिम ने वफा का हक अदा कर दिया, ये तो वो है जिनको अल्लाह ताला ने इंसानियत का इमाम बनाया, लीडर बनाया इंसानियत का, वो है जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। तो इनसे ऐसी बात नहीं हम कह सकते कि इब्राहिम अलैहि सलाम नाऊज़ बिल्ला उनको कोई शक था तो उन्होंने कहा पहले अल्लाह दिखा मुझे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, काला अल्लाह ताला ने फरमाया, फखुज बस लो, अरबात मिन तयर, चार परिंदे ले लो, फसुर हुन्ना फिर उनको मानूस कर लो अपने साथ मायल कर लो, इनको अपनी पहचान करा दो, जैसे होता है कि वो पहचानने लगते हैं ना फिर अपने मालिक को, तो वो किस तरह उसकी आवाज को भी पहचानते हैं, फिर उसको साथ बड़े मानूस से हो जाते हैं। फसुर हुन्ना इलेका, फिर मायल करो अपनी तरफ, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबल मिन्हुन्ना जुज़अन, फिर उनको ज़िबा करके उनके टुकड़े करके ना, और उनके मुख्तलिफ टुकड़े आपस में मिक्स कर दो, सारे मिक्स कर दिया सारा गोश्त, फिर अला कुल्ली जबल, कुल्ली जबल मतलब कहा जाता है कि चार ही पहाड़, चार पहाड़ों पे जाके उनके टुकड़े रख दो, हर पहाड़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा गोश्त डाल के आ जाओ, सारा मिक्स किया हुआ। तो बाज कहते हैं कि कौन से थे, मोर था, मुर्गा था, एक कौवा था, एक कबूतर था, तो ये चार परिंदे थे और इनका गोश्त मिक्स किया। अब किसी की बोटी कहीं है, किसी की कहीं है, किसी की टांग कहाँ पे है, किसी के सर कहाँ पे है, लेकिन ना हर पहाड़ पे बिखरे पड़े हैं उनके टुकड़े। सुम मदउहुन्ना, फिर बुलाओ उनको, यतीना का साया, वो आ जाएंगे तेरे पास दौड़ते हुए। और यही किया इब्राहिम अलैहि सलाम ने, के चार परिंदे लिए, उनके टुकड़े किए और पहाड़ों पे रख दिए, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनको जब बुलाने लगे तो जिस जानवर को आवाज देते थे उसके बिखरे हुए जो पर इधर से उधर उड़ते आते, आपस में जुड़ते और हिस्से सारे जुड़ते, खून खून के साथ मिलता, बाकी जितने भी अज्जा थे जिस जिस पहाड़ पे होते आपस में मिलते जाते, और वो परिंदा जुड़ के उड़ता हुआ आपके पास आ जाता, आप उसे दूसरे सार अपने पास रखा हुआ था, चाहे सार जो था ना वो इनके पास था, ये एक रिवायत में ही आता है, तो आप जो जैसे परिंदा आता उसका नहीं सार, किसी और का सार उसको देते तो वो कबूल नहीं करता था, को उसका सार देते थे तो उसके साथ जुड़ जाता था, यहां तक कि एक एक करके ये चारों परिंदे जिंदा होके उड़ के आए, और इस तरह इब्राहिम अलैहि सलाम के सामने ये आ गया कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा, अल्लाह ने दिखा दिया आंखों से। और ये मैंने आपको बताया था ना कि इस सूरत में पांच वाकयात हैं मौत को, मौत से जिंदगी देने के, तो ये चौथा वाकया था उजैर अलैहिस्सलाम का, और पांचवा वाकया ये कि अल्लाह ताला कैसे मुर्दे को जिंदा करेगा। वालम अन्न अल्लाह अजीज उन हकीम, जान लो ये बात, खूब अच्छी तरह इल्म हासिल कर लो इसका, इल्म लो इसका, किसका, कि बेशक अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है, गलबा अल्लाह का है, इसलिए ही अथॉरिटी है उसकी, उसके पास पावर है, वो कादिर है कुछ भी करने पर। और वो हिकमत वाला भी है। यानी यहाँ इसी तरह अल्लाह ताला जमा करेगा मुर्दों को कयामत के दिन, इसी तरह जिंदा कर देगा। आप इसके अंदर एक बहुत बारीक पॉइंट है, उसको नोट कीजिए, बहुत खूबसूरत बात है। और वो ये बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने साथ मानूस किया हुआ है, हमारी रूहें भी अल्लाह को पहचानती हैं। जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया ना, पहले पहचान कराओ उनको, अपने साथ अटैच कर लो, फिर जब तुम आवाज़ दोगे ना, ये उड़ते हुए आएंगे। अल्लाह ताला ने हमें अपने साथ मानूस कराया हुआ है, ये जो रूह है ये अल्लाह को पहचानती है, और ये जो जिसम है ना, ये अल्लाह ताला का फरमा बरदार है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि दिल चल तू, वो कहता है नहीं, अल्लाह का हुक्म है बंद हो जा, तो वो बंद हो जाता है। हम जितना मर्जी इसको कहते रहे कि तू चल, मैं तुझे कह रहा हूं चल, तू मेरा दिल है, वो मानता है? कोई मानता है क्या? हमारी नहीं मानता ना, इसे नहीं पता चलता कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरी नहीं सुनता, ये अल्लाह की सुनता है। हम एक बीमारी है, कैंसर है, हम कहते हैं तू, कैंसर क्या है? सेल्स ही हैं जो बेहंगम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इंसान के अपने सेल्स हैं। इंसान कहता है कि बंद करो या खत्म करो ये सिलसिला, ये नहीं होना, तुमने नहीं बढ़ना, कितना मर्जी कहते रहो, उन्होंने तो मानना नहीं है, वो तो अल्लाह की मान रहे हैं। ये जिसम भी हमारा अल्लाह से मानूस है और उसकी मानता है, ये रूह भी हमारी अल्लाह से मानूस है और उसकी मानती है। जिस दिन अल्लाह इनको पुकारेगा ना, एक आवाज दी जाएगी, फिर देखना कैसे दौड़े भी जाती हैं हशर के मैदान में और जमा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, वो कैसे भागते हैं फिर, बिल्कुल इन परिंदों की तरह, जिनके टुकड़े कहाँ कहाँ थे और मिल गए ना, इसी तरह हमारा जरा जरा पता नहीं किधर किधर होगा। और जो हजारों सालों से मरे हुए हैं, उनकी तो हड्डियों के भी चूरे हो के, पता नहीं पाउडर बन के, वो पाउडर भी उड़ गए। हजारों सालों से जो मिट्टी में मिल चुके हैं, उनके गोश्त तो कब का खत्म हो गया, हड्डियां तक भी बाकी नहीं है आज। वो जर्रा जर्रा कहाँ जाएगा? कोई कोई समुंदर में पड़ा हुआ है, कोई हवाओं में उड़ के कहीं चला गया, कोई जमीन में कहीं मिल गया, कोई किसी के पैरों के साथ लग के कहीं और चला गया। उनकी तो कब्रें भी खत्म हो चुकी हैं, कब्रों के भी निशान मिट चुकी हैं। वो जर्रा जर्रा जो होगा ना, वो इसी तरह जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो अल्लाह के इज़्ज़त से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुलाने से नहीं, अल्लाह के इज़्ज़त से वो हर टुकड़ा, हर गोश्त का टुकड़ा उसका आता गया, मिलता गया। इसी तरह मेरा और आपका जर्रा जर्रा आपस में मिलेगा, वो जहां कहीं भी होगा, वो समुद्रों की गहराइयों में कोई जर्रा पड़ा हुआ है, वो कहीं जंगलों में कोई पड़ा हुआ है, वो किसी की दीवार की उसमें लगा हुआ जाके, वो जमीन में रुल चुका है, कहीं जमीन में दफन हो चुका है, वहां से हर जर्रा मिलेगा। और मैं और आप खड़े होके उस एक आवाज की तरफ भागते चले जाएंगे, अपना खुद कंट्रोल नहीं होगा, भागते चले जाएंगे, क्योंकि ना ये जिस्म अपना, ना ये रूह अपनी सुनेगी, ये भागेंगे अल्लाह के हुक्म के पास। ये तो थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने हमें ये जो तो इख्तियार दिया था ना, इसको हमने सारा कुछ ही समझ लिया कि बस इसके तो मैं ही मालिक हूं, मैं ही जो करूं, क्योंकि मैं अपना हाथ उठाना चाहती हूँ उठ जाता है, मैं रखना चाहती हूँ रखा जाता है, तो मैंने समझ लिया कि मैं ही बा इख्तियार। हालांकि ये भी अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि ए हाथ उस वक्त उठना जब ये चाहे, ए जुबान उस वक्त बोलना जब ये बोलना चाहे। जिस दिन अल्लाह ने ये इख्तियार ले लिया, वापस देखना यही जुबान हमारे खिलाफ बोलने शुरू हो जाएगी, हमारी सारी बातें बताएगी, ये स्किन हमारे खिलाफ ही बोलेगी, हमारी सब शिकायतें लगाएगी, ये आंख कान ये सब चीजें हमारी खिलाफ बोलेंगी, क्योंकि ये अल्लाह के गुलाम है और ये अभी भी उसकी गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि उसने हुक्म दिया कि इसकी मान। जिस दिन वो ये हुक्म वापस ले लेगा, तो वो वापस अल्लाह के फरमाबरदार। इतनी छोटी सी टेस्ट को, इतनी छोटी सी बात को हमारी अक्ल ने नहीं समझा आज तक, और हम खुद खुदा बन बैठे। आज जिसको इकतदार मिलता, देखे क्या वो फिरौन और नमरूद नहीं बन जाता, उसको सब हकीर कीड़े नहीं नजर आने लगते, उसको खुद ना भी दावा करे कोई भी नहीं दावा करता, ना भी कोई कहे आज के दौर में कि मैं खुदा हूं, लेकिन वो काम वही करता है जैसे कि वो खुदा ही है। वो खुदा बन जाता है, अपने आप को यही समझने लगता है। क्या आज ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं समझते, हम ये नहीं इसको यकीन रखते कि ये सारा कुछ मुझे अल्लाह ने अमानत के तौर पे दिया, मैं थोड़ी देर के लिए इसकी मुझे मालिक बनाया, ये सब इख्तियार अल्लाह ने वापस ले लेना, ये सब उसके गुलाम है, मेरा कुछ नहीं है खुद। देखो फिर कैसे ये जिस्म दौड़ेगा अल्लाह की तरफ, क्योंकि ये उससे मानूस है। असल बात ये है कि इंसान इस दुनिया में जब अल्लाह ने इख्तियार दिया, तब अपने आप को अल्लाह से मानूस कर दे, तब अपने आप को अल्लाह की तरफ मायल करे, तब इंसान अल्लाह ताला का हो जाए, तब मजा आएगा उस दिन जब दौड़ेंगे भी उसकी तरफ। वरना दौड़ तो लगनी है अल्लाह की तरफ, जाना ही पड़ेगा उस दिन उसकी तरफ, लेकिन फिर हालत क्या होगी, इंसान का दिल क्या होगा और उसके जिस्म की हालत क्या होगी, वो जान रहा होगा कि मैंने दुनिया में क्या किया। तो आज इसको मानूस करो अल्लाह ताला से, आज इसको अल्लाह की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि इसके अंदर तड़प है एक रब को पाने की, वो पहचानता है उसको, हमने उसको इधर उधर भूल भुलैयों में लगा दिया। मसलों मिसाल अल्लादीना उन लोगों की, युनफिकूना वो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। अब आगे उनकी मिसाल बताई जा रही है जो अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी प्यारी चीज देते हैं, कुर्बान करते हैं। और मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला यहाँ उन लोगों की मिसाल बताता है जो खर्च करते हैं और किन को अजर मिलता है, और जो खर्च करते हैं अल्लाह ताला के हाँ उनके खर्च की क्या वैल्यू है। और पहले भी हम आयतल कुर्सी से पहले भी हम एक आयत पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो अल्लाह ने दिया रिस्क उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाएगा कोई सिफारशी भी नहीं होगा, कोई करीबी दोस्त नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई तिजारत नहीं होगी, लेन देन के कोई सौदे नहीं वहां पे हो सकेंगे। और अब बताया जा रहा है जो खर्च करता है उसका क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे खर्च की, अल्लाह के रास्ते में खर्च की फजीलत है। आगे ये बेस्ट है खर्च, आगे आप देखेंगे जो वर्स्ट खर्च है यानी वो जो वर्स्ट मामला है, और वो है सूद का मामला, वो आएगा, और जो हराम है, और उससे आगे फिर कर्ज की बात आई जो हलाल है। मथलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, कैसी इसकी मिसाल है, का मथल हब्बतन जैसे एक दाना है, अंबतत सबअ सनाबिल उससे उसने उगाई सात बाले, यानी इस दाने ने सात बाले उगाई। आप देखते हैं एक दाना आप जमीन में डालते हैं, एक बीज डालते हैं, उससे वो बाले निकलती हैं, तो सात निकली। फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिएतु हब्बा, हर बाली में सौ दाने। अच्छा आप अगर आपने नहीं भी कोई ऐसी चीज देखी नहीं तो आप एक सिट्टा जो होता है, कॉर्न जो होता है, उसको इमेजिन कर लें। आप एक कॉर्न के ऊपर कितने सारे छोटे 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 दाने होते हैं, तो हर बाली में सौ दाने समझे। आप उसके वो छिलका खोलते हैं कॉर्न का, तो वो मकई का, तो आप उसमें से देखते हैं कि देखिए एक बीज था उसमें कितने सारे सिट्टे निकले और हर सिट्टे के अंदर कितने सारे दाने। अल्लाह ताला ने ऐसे मिसाल दी कि वो देता है एक डॉलर, उससे उगती है सात बालियां और हर एक के ऊपर सौ दाने, मतलब कितने हो गए, कितने दाने हो गए बताएं, एक दाने से कितने बने, 700, है ना, क्योंकि सात है, सात में से हर एक के ऊपर सौ सौ दाने हैं। एक देने के ऊपर अल्लाह सौ का अजर देगा, ये मतलब है। तुम एक उगाओगे, एक जमीन में डालोगे और देखो फिर उससे निकलता क्या। लेकिन एक बात बताएं, क्या हर बीज से इस तरह से निकलता है? नहीं ना। अगर बीज वायरस ज्यादा हो, बीज ही खराब हो, तो क्या निकलेगा उससे, कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर जो बीज यानी जो आपने डाला है उसमें नीयत खराब है, उसमें कोई रियाकारी है, उसमें कोई दिखावा, कोई और ऐसी चीज है शामिल, या वो हराम की कमाई से है, तो नहीं निकल सकती उससे ये बाले और ये दाने नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं निकलेगा, वो जमीन में रुल जाएगा। देखते हैं आप कई बीज डालते हैं पर नहीं उगते। इसी तरह एक और बात है, अगर बीज बोरी में पड़ा रहे तो बीज तो वही है, क्या उग जाएगा? नहीं, उसको जमीन में डालना पड़ेगा तो तब ये रिजल्ट आएगा ना। इसी तरह पैसा बैंकों में पड़ा रहे ना माल, या घरों में पड़ा रहेगा, तब नहीं उसके से 700 बन जाएंगे अल्लाह के यहाँ, अल्लाह उससे 700 नहीं दे देगा। हाँ, जब अल्लाह के रास्ते में लगाओगे तो तब उसका 700 निकलेगा। और वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह बढ़ाता है जिसके लिए चाहता है, जिसके लिए चाहे 700 से भी ऊपर दे दे, जिसके लिए भी चाहे। यानी क्या मतलब, जिसको चाहे 800 दे, जिसको चाहे 1,000 दे, जिसको चाहे बेहिसाब अता फरमाए, यानी गिनती नहीं कर सकोगे। 700 तो वो है जो मिनिमम है जो मिलेगा, अगर नीयत खालिस है, अगर अल्लाह के लिए दिया है, अगर माल हलाल है, अगर वाकई सही नीयत के साथ लगाया हुआ ना, तो फिर तो ये मिलेगा, या इससे भी ज्यादा अल्लाह बढ़ा दे। अल्लाह बढ़ाता किसके लिए? क्योंकि अल्लाह ताला को पता है ना कि किसने किन हालात में दिया, किसके पास कितना था उसने उसमें से दिया। अल्लाह ताला बाज दफा, एक हदीस में आता है जिसका मफहूम है, मेरे सामने हदीस नहीं है, कि बाज दफा किसी का एक किसी के 1,000 से भी ज्यादा हो जाता। कैसे? जिसने एक दिया, उसके पास था मसलन 100 था, उसने उसमें से एक दे दिया। जिसके पास 1,000 है उसके पास तो करोड़ों था, उसने उसमें से 1,000 निकाला तो कुछ भी नहीं। जिसके पास 100 था उसके लिए तो वो एक भी बड़ा कीमती है, उसका पास एक ही था उसने वो दे दिया, उसका एक ज्यादा कीमती है उसके 1,000 से, हालांकि वो देखने में उसने ज्यादा दिया है। आप क्या दे रही हैं? $1 दे रही हैं, ये तो कुछ भी नहीं, इससे क्या बनेगा? लेकिन आपको नहीं पता कि जिसने दिया है उसके पास पता नहीं क्या हालात हो, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। जिसने 1,000 दिया वो पता नहीं उसके पास करोड़ों पड़े, आप उसके 1,000 के पर वाह वाह करते हैं, उसके नाम अनाउंस करते हैं, आप उसको खड़े होकर शाबाशें देते हैं, माइक में बताया जाता है फलां को देखे उसके लिए तकबीर, उसके लिए तकबीर। आपको नहीं पता जिसने वो $20 ही डाले हैं ना, वो बेचारा कितना कमाता होगा, उसने उसके लिए 20 भी निकालने मुश्किल थे, उसने उसमें से निकाले। और जिसने 10,000 का चेक दे दिया ना, उसको तो ये भी नहीं पता उसके पास है कितना, वो बहुत बेशुमार है, उसके कहाँ कहाँ अकाउंट है, उसके कहाँ कहाँ विलाज है, उसके पास कितना माल है, उसके लिए तो 10,000 कुछ भी नहीं है, वो तो 10,000 को आग लगा के भी डाल दे कहीं तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो अल्लाह को पता है ना, तो उसका 10,000 जिसपे आप आशाश करते हैं ना, वो अल्लाह के हाँ उतनी वैल्यू नहीं रखता जितने इसके $20 रखते हैं, क्योंकि अल्लाह मोहताज नहीं है किसी का भी। अल्लाह उसकी देखे, या तो आप अस्तगफिरुल्लाह ऐसे किसी को दे रहे हो ना जिसको जरूरत है, तो आप कहेंगे नहीं वाकई 10,000 तो बहुत बड़ी चीज। अल्लाह गनी है, गनी, उसको तुम्हारी पैसों की नहीं जरूरत है, इसीलिए उसको पता है कि ये जो 20 है ये किस तरह दिया गया है, इसलिए उसके हाँ कदरदानी है उसकी। तो हम जो चीजें देखते हैं ना, अल्लाह ताला वासिउन है और अलीम है, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह के पास इल्म भी बहुत है, उसको पता है कौन किस तरह देता है, कितने जज्बे से देता है, या कितनी घुटन से दे रहा है, कितने शौक से दे रहा है, या कितनी बदनीयती से दे रहा है, किन सख्त हालात में दे रहा है, कि कुशादा हालात में दे रहा है, अल्लाह को पता है। और वो वासिया है, वो तुम सोचते हो हाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि एक का 700 वो दे दे। कोई बैंक बताएं, कोई जगह बताएं, कोई बिजनेस बताएं जो आपको 700 टाइम्स करके दे कि आप $1 इन्वेस्ट करें, वो कहे आपको 700 देंगे हम इसके। नहीं है कोई, 2% कोई दे देगा, कोई बहुत करेगा 5% दे देगा, बस। अल्लाह ताला कितना देता है? 700 गुना। तो इंसान हैरान होता है, इतना से आता इतनी सी चीज के ऊपर। 100 दिया तो 70,000 देगा वो आगे, इतना बड़ा मार्जिन। तो जब इंसान हैरान होता है ना, तो अल्लाह बताता है वल्लाह हुआ ऐसे, इंसान हैरान होता है अच्छा अल्लाह उस 700 से भी ज्यादा दे सकता है। तो अल्लाह बताता है तुम्हारा मामला देखो किसके साथ है, तुम्हारा मामला किसी इंसान के साथ नहीं है, किसी ने गिन गिन के देना हो देख देख के देना, तुम्हारा मामला उस अल्लाह के साथ है जो वासे है, वुसत वाला है। उसकी वुसत को तुम अंदाजा ही नहीं कर सकते कि उसकी वुसत कितनी है। उसकी वुसत एक हदीस से आप अंदाजा कीजिए कि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दे दूं, तुम मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दे दूंगा, तुम सब फकीर हो सिवाय उसके जिसको मैं गनी कर दूं तो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, तुम सब गुनाहगार हो सिवाय उसके जिसको मैं बचा लूं, तो तुम में जो ये जाने कि मैं माफ करने पर कुदरत रखता हूं और उसने मुझसे माफी चाही तो मैं उसको माफ कर देता हूं और मुझे परवाह नहीं होती, अगर तुम में से पहला और आखिरी आदमी और जिंदा और मुर्दा और खुश्क और तर सब के सब, यानी जितने मर चुके हैं वो भी खड़े हो जाए, जितना खुश्क तारा है यहाँ पे सब खड़ा हो जाए, पहला और आखिरी आदमी सब खड़े हो जाए, ये सब मेरे बंदों में से सबसे मुत्तकी आदमी के दिल की तरह हो जाए, तो इससे मेरी बादशाहत में किसी मच्छर के पर के बराबर भी इजाफा नहीं हो जाएगा कि बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सारे इतने नेक हो गए, सारे सजदे कर रहे हैं, सारे रोजे रख रहे हैं, सारे नमाजें पढ़ रहे हैं, उससे अल्लाह को नहीं फर्क पड़ता। अगर तुम में पहला और आखिरी और जिंदा और मुर्दा और खुश्क और तर सब के सब मेरे बंदों में सबसे बदबخت शख्स की तरह हो जाए, उसके दिल की तरह अस्तगफिरुल्लाह, जैसे इंसान कहे कि शैतान के दिल की तरह अस्तगफिरुल्लाह सारे के सारे हो जाए, इससे मेरी बादशाहत में किसी मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं हो जाती, इतनी सी भी कमी नहीं होगी कि सब छोड़ दे अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे, सब छोड़ दे अल्लाह की इबादत करना, सब उसके बागी हो जाए, अगर सब उसके नाफरमान हो जाए अल्लाह को नहीं फर्क पड़ेगा, अल्लाह को नहीं फर्क पड़ेगा। तो अपने रोजों अपनी नमाजों को मत जिताओ अल्लाह के ऊपर कि हम कितने बड़े कारनामे कर रहे हैं, हम कितना जाग रहे हैं, हम कितना पढ़ पढ़ के कुरान, और हम कितने थक रहे हैं, और हम कितने, ये अल्लाह के ऊपर कोई एहसान नहीं है। वो तो सारे के सारे भी आप ऐसे हो जाओ तो फिर भी अल्लाह को ना फर्क पड़े, तो किसके ऊपर एहसान जताते हो, कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे। फिर फरमाया अगर तुम्हारा पहला और आखिरी आदमी और जिंदा मुर्दा खुश्क तार सब एक मैदान में जमा हो जाए और तुम में से हर इंसान अपनी आखिरी दर्जे की तमन्ना मांगे, यानी मांगो मांगो इतना मांगो कि जितनी तुम्हारी कोई ड्रीम्स की बातें है ना वो भी सारी मांग लो आखिरी दर्जे तक की, और मैं तुम में से हर मांगने वाले का सवाल पूरा कर दूं, तो इससे मेरी बादशाहत में इससे ज्यादा कमी नहीं होगी जितना अगर तुम में से कोई समुंदर से गुजरे और एक सुई डबो के निकाल ले, तो जितना पानी सुई में लग गया ना इतना अल्लाह को सबको देने में इतना उसका सिर्फ खर्च है, इसलिए कि वो सखावत वाला है और वो बड़ाई वाला है और जो चाहता है करता है। ठीक है, तो ये तिर्मिजी की रिवायत है कि अल्लाह ताला इतना भी अता फरमाए तो उसके खजानों में कोई कमी नहीं आनी, वो इतना देने वाला है कि कब से जब से दुनिया कायम है वो खर्च कर रहा है खर्च कर रहा है खर्च कर रहा है, वासे है ना वो खर्च कर रहा है और उसके कोई कमी नहीं आती। हदीस में आता है ना अल्लाह का हाथ भरा हुआ है रात और दिन मुसलसल खर्च से भी ना कोई कमी आती है, और तुमने देखा नहीं जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया मुसलसल खर्च किए जा रहे, लेकिन उसके हाथ में कोई कमी नहीं होती। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपनी वसी खजानों में से हम सबको भी अता फरमाए, उसके इस खजानों में कोई कमी नहीं है, हर किस्म के खजाने उसके पास है, यानी आप देखें सिर्फ माल के नहीं है, हर किस्म के खजानों में वुसत है उसके पास। इज्जतों के खजाने ले लो, किसी को इज्जत चाहिए अल्लाह के पास इज्जत के खजाने हैं, किसी को सेहत चाहिए अल्लाह के पास सेहत के खजाने, किसी को रिज्क रोजी चाहिए अल्लाह ताला के पास रिज्क रोजी के खजाने हैं, किसी को औलाद चाहिए अल्लाह ताला के पास औलाद के खजाने हैं, किसी को कोई चीज भी चाहिए अल्लाह के पास उसके खजाने हैं, अल्लाह से मांगे, किसी को सुकून चाहिए, सुकून के खजाने अल्लाह के पास है, और वल्लाह वासिउन, वुसत वाला है, वुसत वाला है, वो कंजूस नहीं है, बखील नहीं है, वो दे के नहीं कहता कि ओ कल तो तुम्हें दिया था, इतना वो वुसत वाला है। तुम ये तो सोचो तुम्हारा मामला है किसके साथ। हदीस में आता है, छोटी सी हदीस है, बहुत मुख्तसर, इसको ऐसे ही याद कर लें, एक दूसरे को कहा करें फिर ये, ठीक है। अनफिक उनफिक अलैक, अनफिक खर्च करो, यानी अल्लाह ताला फरमाता है मेरे रास्ते में खर्च करो, उनफिक अलैक मैं तुम पे खर्च करूंगा, तुम खर्च करो मैं तुम पे खर्च करूंगा। कितने छोटे तीन लफ्ज है सिर्फ, आपको एक हदीस याद हो जाएगी। अनफिक बोले मेरे साथ, अनफिक खर्च करो, उनफिक अलैक तुम पे खर्च किया जाएगा, यानी अल्लाह ताला तुम्हें कहता है खर्च करो, तुम कितना खर्च कर लोगे, कितना है हमारे पास, कितना दे देंगे हम, बहुत भी देंगे तो कितना दे देंगे। लेकिन जब वो कहता है ना कि तुम पे खर्च किया जाएगा, जब वो खर्च करेगा तो उसके खजानों की वुसत तो हम अंदाजा ही नहीं कर सकते, इतने खजाने उसके पास हैं। जब वो खर्च करेगा तो वो अपने मुताबिक खर्च करेगा, हम खर्च करेंगे तो हम अपने मुताबिक करेंगे, सोचे हमारा खर्च करना कितना होगा, और जब वो खर्च करने पे आएगा तो वो अपनी शान के मुताबिक खर्च करता है, फिर वो तुम्हें देने पे आएगा तो वो फिर तुम्हारे तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरे रास्ते में दिया जाता है ना, वो एक दाना एक नहीं रहता, एक का बदला मैं तुम्हें $1 दे के वापस नहीं करूंगा, 100 दिया तो 100 दे के वापस नहीं करूंगा, वो तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह कैसे बढ़ाता है। इसीलिए वो हदीस में आता है ना कि इंसान एक खजूर जो उसने अल्लाह के रास्ते में दी होगी, कयामत के दिन वो देखेगा ओहद पहाड़ के बराबर होगी, एक खजूर उसका खलूस है ना उस बंदे का जो उसको बढ़ा देता है। अल्लाह ताला ने बढ़ाया क्यों, इसलिए कि इसने किस नियत से दिया। अल्लाह अकबर। अल्लदीन युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह। अच्छा, अब आगे आ रही है वो शर्त, जिस शर्त के ऊपर अल्लाह ताला अता फरमाता है अजर बेहिसाब और 700 गुना और बहुत कुछ, लेकिन वो शर्त क्या है वो सुनने की जरूरत है। अल्लदीन युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा फिर, सुम्मा मैंने आपको बताया ना तराखी के लिए आता है, मैंने कुछ अर्सा गुजर जाता है फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एहसान जताने लगते। लेकिन यहाँ पे कहा गया थुम्मा ला युतबिउन मा अनफकुम मन्नम वला अज़न, फिर नहीं वो पीछा करते उसका जो उन्होंने खर्च किया था ना, कभी उसको पीछा नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, वो क्या करते, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाते, याद भी नहीं है किसको कितना दिया था, पीछा नहीं करते। ये क्या कर, ये यहाँ पे बताया गया कि ऐसे लोग जो हैं वो मन और एहसान के साथ, सॉरी मन और अजा के साथ पीछा नहीं करते, यानी उसके बाद उसके इस खर्च के पीछे वो कभी एहसान नहीं जताते, दूसरों के तकलीफ दे बात नहीं कहते, ऐसों के लिए लहुम अजरुहुम इंदरमी, इनके लिए है अजर उनके रब के पास, दूसरों के लिए नहीं, जो मन और अजा करते हैं ना उनके लिए कोई अजर नहीं है। जो अपने इनफाक के पीछे ले आते हैं ऐसी बातें, देखा नहीं हमने तुम्हारा उस वक्त जिस वक्त तुम इस हालत के दिन थे, हमने तुम्हारा कितना साथ दिया था, याद है उस वक्त आपने किसी जगह पे किसी मस्जिद में किसी प्रोजेक्ट में आपने कोई डोनेट कर दिया, उसके बाद अपना इख्तियार समझने लगे कि मैं अब जो कहूंगी वो यहाँ पे होना चाहिए, मैं जब आऊं तो और कुछ नहीं तो मुझे रिस्पेक्ट ही मिलनी चाहिए। जब इस किस्म की चीजें आ जाती हैं अपने खर्च किए हुए के ऊपर, तो वो ही है एहसान जिताना कि हमने दिया है ना तो वी डिजर्व रिस्पेक्ट। अब अगर कोई नहीं रिस्पेक्ट करता, कोई पूछे भी नहीं, आपने बहुत बड़ा डोनेशन दिया किसी मस्जिद के लिए, अब आप वहां पे एंटर होते हैं, आपका दिल करता है कि भाई आए आके भाई सब मेरे लिए हाजिर बाश खड़े हो जाएं, मुझे वेलकम करें, मेरा नाम अनाउंस हो, मुझे इज्जत दी जाए यहाँ पे, मुझे आगे लाके बिठाया जाए, मेरे वाकई उस तरह का मेरा प्रोटोकॉल मुझे मिले जिस तरह मैंने इस मस्जिद के लिए इतना भाई किया है, तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। किसी ने परवाह ही नहीं की। मैंने इतना किया, मैंने इतनी जान मारी, मैंने इस तरह किया, देखो अब ये क्या। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो ऐसा है ना, यहां पे भी जाया, यहां पे भी उसकी किसी ने इज्जत ना की, और आखरत में तो जाया हो ही गया। आप नोट करें, अल्लाह ताला हम सबको माफ कर दे, अल्लाह हम सबको माफ कर दे, अल्लाह हम सबको माफ कर दे, लेकिन हमारे कई इन्फाक फी सबीलिल्लाह जाया हो चुके हैं, हमें पता भी नहीं है किस वजह से, मन और अज़ा की वजह से। इतनी अजियत वाली बातें हम बाज दफा लोगों को कह देते हैं, ऐसी तकलीफ दे बातें लोगों को कह देते हैं, ऐसे एहसान जिताते हैं, किसी यतीम की किफालत की सारी जिंदगी करके वो अब बड़ा हो गया, सुम्मा फिर उसके बाद जब अरसा गुजर गया, सारा हो गया, अब वो उस तरह इज्जत नहीं करता जैसे करनी चाहिए उसको, जैसे हमें समझना चाहिए उसको कि भाई ये इन्होंने मेरे साथ कोई अच्छाई की है, वैसे नहीं ये कर रहा। आवाज एक दिन उसने ऊंची कर दी तो उसको कह दिया तो याद नहीं है, तो हमारे टुकड़ों पे पले हो। लो जी, जिस दिन ये लफ्ज कह दिया ना, सारा पिछला जो था खत्म, गारत जीरो हो गया, जीरो हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इतने सालों की जो जो आपने उसके साथ भलाई की, जो आपने उसके ऊपर खर्च किया, वो यहां तो जाया हुआ ही क्योंकि उसने भी नहीं इज्जत की, आखिरत में भी जाया हो गया। इसी तरह औरों को अजियत देते हैं हम, तो इतने हमारी तो यानी आदत इतनी पड़ चुकी है ना कि जूं ही हम थोड़ा सा भी कोई अच्छाई करते हैं, फौरन हमने एहसान जरूर जताना होता है, हम तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो याद नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए ऐसे किया, ये किया, वो किया, वो किया, वो भी नहीं छोड़ते हम। अब यही हमें आदतें पड़ी हुई है, फिर जहां किसी को दे भी देते हैं तो वहां पे भी हमारा यही हाल होता है, क्योंकि जब इंसान देता है ना तो वो सोचता है कि अब इसका मुझे कुछ मिलना चाहिए, इनको कुछ समझना चाहिए मुझे, ये मुझे यानी अब मैं कुछ एक ऐसी पोजीशन में आ गया हूं कि ये कुछ माने, इसको इसको कुछ अप्रिशिएट करे। जरूरी नहीं कि मेरा नाम ही अनाउंस हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो अप्रिशिएशन होनी चाहिए ना। लेकिन जब इंसान देखता है ना कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर उसको बड़ी उसकी अना को ठेस लगती है, हाय इतना मैंने किया, कुछ भी नहीं किसी ने समझा। क्योंकि जब दे रहा था ना तो देते वक्त एक अपने अंदर बड़ाई का एहसास था कि देखो मैं दे रही हूं, अब वैसा तो रिएक्शन मिला ही नहीं, अप्रिसिएशन तो मिली नहीं कुछ, तो अब अना को ठेस पहुंची। जब अना को ठेस पहुंचती है तो फिर इंसान जुबान से क्या निकालता, फिर इंसान जुबान से मन और अजा की बातें निकालता। और ये सिर्फ माल खर्च करने पे नहीं है, अल्लाह के रास्ते में किसी ने अगर वक्त लगाया अल्लाह के रास्ते में, किसी ने अगर मेहनत लगाई अल्लाह के रास्ते में और उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली उसको। आप लोग काम करते हैं क्लास में, कई लोग बहुत बहुत बढ़ के आगे काम कर रहे थे, इन द एंड वो क्या चाहते हैं, हमारा नाम पे डिस्प्ले हो बोर्ड पे, हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमें स्टेज पे बुलाया जाए, चलो कुछ नहीं हमें, चलो अनाउंसमेंट ही की जाए कि इसने कोई अच्छा किया है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये क्या बात हुई। तो क्या मिला फिर जब ये कह दिया ना, उन्होंने तो दुनिया वालों ने तो क्या अप्रिशिएट करना, वो तो भूल भी गए होंगे हाँ, लेकिन अल्लाह के हाँ भी वो नजरों से गिर गया, अल्लाह ताला ने भी कहा ये जिसके लिए किया था बस उसके लिए ही है फिर, या उन्हीं से लोग उन्होंने भी ना अजर दिया, क्योंकि क्यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे जिसके लिए तुमने किया था ना उसी से जलो जाके लो बदला, मैंने नहीं, मेरे लिए तो किया ही नहीं। और कभी कभी हम बड़ी सिंसेरिटी से शुरू करते हैं काम, लेकिन एंड में हमें क्या होता है, हो अब तो मुझे कुछ भी नहीं इन्होंने दिया। कोई इंसान को दिल चाहता है कोई पसंदीदा नजरों से ही देख ले, अप्रिशिएटिव नजरों से ही देख ले, कोई समझे तो सही, कोई माने इस चीज को। हर हर जगह पे इंसान को पैसों का नहीं होता कि मुझे कोई प्राइज ही मिले, मगर अप्रिसिएशन चाहिए होती है, जैसे हम दुनिया की चीजों में चाहते हैं कि कोई अप्रिशिएट करे, वही हम अपने बच्चों से चाहते हैं, वही हम अपने खानदान वालों से चाहते हैं, और जब नहीं मिलती ना तो हम फिर सब छोड़ के बैठ जाते हैं, और फिर हम ये बातें करने लगते हैं, इतना किया मैंने तो, बड़े साल करके देख लिया मैंने, कुछ नहीं मिला मुझे, छोड़ो अब ऐसे। तो फिर आपने जिनके लिए किया था फिर वो वैसे ही थे, वो भी आपकी तरह के इंसान थे, वो भी फकीर हैं, आप भी फकीर हैं, वो आपको क्या दे सकते, अगर अल्लाह के लिए किया होता तो वो वासिया है, वो गनी है, वो फिर जब खर्च करता तो फिर आपसे संभाला भी ना जाता, इतना वो खर्च करता है। तो लेकिन हम अपनी उम्मीदें किधर लगाते हैं, हम देखते किन की तरफ हैं। जब भी कुछ भी खर्च करना है, चाहे माल खर्च करना है, चाहे एफर्ट खर्च करनी, चाहे आपके पास कोई सलाहियत है वो खर्च करनी, चाहे इल्म खर्च करना। अब मैं इल्म दे रही हूं तो मैं कहूं कि भाई ये मेरी इज्जत करें, अगर इज्जत ही नहीं उन्होंने की तो फिर क्या फायदा। ये तो मैं इनसे पैसे नहीं मांगती, चलो इज्जत तो दे। अब चलो इज्जत नहीं दी तो चलो सारा कुछ एहसान जता के अल्लाह ना करे वो जाया कर दिया। और कभी तकलीफ दे बातें इंसान ऐसी कर देता है उस वक्त कि जो दूसरे का दिल पाश पाश कर देती। हम जब तुम आए थे तो हमने देखो तुम्हारे साथ इस तरह किया था, उस वक्त जब तुम्हारी जॉब चली गई थी तो देखा था उस वक्त तुम्हारे क्या हालात थे, उस वक्त हम खड़े हो गए थे, फलाना वक्त में तुम बीमार थी, मैं तुम्हारे घर खाने लेकर आती थी, मैंने पका पका के इतने दिए, मैंने फलाना किया, मैंने तो ये किया। ये सब चीजें उनको जाया कर देती हैं। आप सुना लें जितना सुनाना है, वो उस बंदे को नहीं कोई असर होना, ना किसी और को कोई फर्क पड़ेगा, वो सुन लेगा आपकी बात, लेकिन आपने तो अपना अमल जाया कर दिया ना एहसान जिता के। ये एहसान जिताना, और ये जरूरी नहीं आप फकीर को ही दें तो उसको, बल्कि किसी फकीर को दिया हो तो फिर उसके बाद इंसान को याद भी नहीं रहता। ये अक्सर उनमें होता है जहां पे हम अपने जानने वालों में कहीं या अपने करीबी हलके में कहीं खर्च करते हैं, वहां पे बड़ा जल्दी आता है याद। अपने रिश्तेदार हैं, अपने जिनके पास वापस मुड़ के आपने जाना है, अपनी मेड है कोई, वो काम वालियों को तो हम देख के ये समझते हैं बस हमारी गुलाम हो गई। अब वो घर का काम तो करें करें, बाकी भी छोटा मोटा हम उनसे इसलिए काम ले लेते हैं क्योंकि हम इनके ऊपर खर्चे इतना करते हैं, हमने फलाने वक्त में इनको इतना दिया था, इसके ऊपर कर्जा था मैंने इसका कर्जा उतरवाया, इसकी बेटी की शादी थी मैंने उसमें हेल्प की, इसका खामिद बीमार था मैंने उसमें दिया था। और उसके बाद हमारा क्या होता है, उनसे एक्सपेक्टेशन कितनी बढ़ जाती है क्योंकि हमने इनको ऊपर दिया था, तो फिर आपने तो यहीं पे बदला लेने का किया ना। और अगर वो काम छोड़ के चली जाए फिर, या अगर वो कहे मेरी तनख्वाह बढ़ा दे फिर, या अगर वो किसी दिन छुट्टियां करने शुरू हो जाए तो फौरन एहसान जता देते हैं, लो जी हमने तुम्हारे साथ इतना किया, तुम तो एहसान फरामोश हो। हमने कितने अपने सदके जाया कर दिए, सोचें ये करके कितने अपनी खैरातें, कितनी अपनी ये सब चीजें जो हम सोचते हैं हमने अल्लाह के रास्ते में दिया वो जाया जाया कर दिया ये ही काम करके। इसीलिए फॉलो ना करो उसको, पीछा ना करो उसका, फिक्र नहीं करनी उसके बाद कि भाई क्या क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। नहीं, जब दे दिया ना तो वो अल्लाह को दिया, जब अल्लाह को दे दिया तो फिर इसके बाद कोई एहसान नहीं जताना, समझ लो इसको नहीं दिया मैंने तो अल्लाह को दिया, उसको क्यों तकलीफ देते हो अपनी ऐसी बातें करके। और वाकई किसी के लिए कितनी अजियत वाली बात बन जाती है, कितना उसका दिल खराब होता है। और बाज दफा लोगों को रुला देते हैं ऐसी अजियतनाक बातें करके, तो अल्लाह के हाँ फिर क्या अजर मिलेगा ऐसे खर्च करने का। तो ना सिर्फ अपनी माल के मामले में इसकी फिक्र करें, देखिए एक होता है खर्च करना तो ठीक है एक मुश्किल काम है, लेकिन उसके बाद खर्च आपने जब कर लिया ना फिर तो इतना फूंक फूंक के कदम रखें, इतने केयरफुल हो जाएं, इसलिए कि शैतान पीछे लग जाता है, वो फिर कहता है कि मैं इसने खर्च तो कर ही दिया ना अब जाया करा दो किसी का, तो वो छोड़ेगा नहीं उस खर्च को। इसलिए चाहे माल खर्च किया हो, चाहे आपने वक्त कहीं लगाया हो अल्लाह के रास्ते में, बिल्कुल उसको भूल जाए, उसकी तवक्को ना रखें कि अब इसका क्या मिलेगा, कहें अल्लाह तू अपने खजानों से मुझे अता फरमा और सबसे बेनियाज कर दे, मुझे किसी की वो ना रहे कि इसकी हिर्स, इससे लेना है, उससे अप्रिसिएशन, उसने मेरा नाम लिया कि नहीं, उसने कुछ कहा कि नहीं, मुझे प्राइज मिला कि नहीं, मुझे गिफ्ट दिए इन्होंने कि नहीं, मुझे खड़ा करके मेरे लिए तालियां बजवाई कि नहीं, मुझे स्टेज पे बुलाया कि नहीं, मेरा नाम डिस्प्ले हुआ कि नहीं। ये सब चीजें खत्म कर देती हैं नेकी को, खत्म कर देती हैं, आग लगा देती हैं इसको, कितनी मुश्किल से हम नेकियां करते हैं, कितनी मुश्किल से अपना वक्त लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं या अपना माल लगाते हैं, फिर क्या हासिल होता है? और फिर उसको अप्रिशिएट किया तो मुझे क्यों नहीं किया, मैंने तो उससे ज्यादा काम किया हुआ। तो वो खुशकिस्मत है जिनका नाम नहीं कहीं लिया जाए, वो बचे हुए, क्योंकि वो रिया से बच गए, रियाकारी में उनका अमल जाया होने से बच गया, वो छुपे रहे, वो ज्यादा बेहतर है उनसे जिनका अमल सबके सामने होता है। उनको तो हर वक्त डर रहता है कि किसी वक्त अल्लाह अमल ना जाया हो जाए, क्योंकि इंसान को नहीं पता उसके अंदर शैतान इतना साथ है ना हमारे लगा हुआ, किस वक्त रियाकारी ले आए, किस वक्त सारा अमल जाया करा दे। तो वो तो खतरे में है जिसका अमल सबके सामने आ जाए। लाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो लोग उनका अजर उनके रब के पास है, जो फिर इस शर्त के साथ खर्च करते हैं, याद रखें उनका अजर है उनके रब के पास, सबको नहीं मिल जाना अजर। तो आज से फिर नई तरह से खर्च करना इसका मतलब शुरू करें, ये सब चीजें समझ के। और अक्सर लोगों को नहीं ये जब पता होती है, जब कुरान पढ़ा ही नहीं हुआ, तो आप देखें हमारी सोसाइटीज में कितना ज्यादा एहसान जिताना है, जिधर जाओ एहसान, कोई नेकी कार क्या दे, फिर उसके बाद यही डर रहता है कि उसके बाद अल्लाह ये कहीं एहसान ही ना जिता दे, नहीं ये देखो जी हमने तो इतना इनके साथ किया, देखो जी क्या मिला हमें इनके साथ ऐसे करके। कितना दफा हम ये जुमले सुनते हैं और इनके अंदर अजियत होती है। तो जो ये नहीं करेगा, यानी वो इतना बड़ा उसका दिल होगा, जाहिर है ये छोटे दिलों वालों का काम नहीं ना होता, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। तो जिसके अंदर जिसका इतना बड़ा दिल हो कि उसको परवाह ना हो किसी के साथ करके वो आगे चल पड़े, करता ही जाए नेकियां, भूलता जाए पिछला। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। जिस दिन लोगों को कितना खौफ होगा, उस दिन इनको खौफ और गम नहीं होगा, अल्लाह के अर्श का साया इनको मिलेगा। एक हाथ से खर्च किया था, दूसरे को खबर नहीं थी, जो एहसान क्या जताना था, इनको कोई खौफ गम नहीं होगा वहां। और यकीन जाने दुनिया में भी ऐसा इंसान जो होता है ना, वो इत्मीनान से रहता है, क्योंकि वो भूल गया होता है किसी साथ करके, उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, और वो तकलीफ में रहता है जो हर वक्त देखता रहता है। अब किसी ने समझा भी कि नहीं समझा कुछ मुझे, अगर नहीं समझाया तो फिर अब उसको तकलीफ होती है, जाहिर है वो एहसान जिता के फिर भी तकलीफ में ही रहता है, वो गली सड़ी दूसरों को सुना के फिर भी अजियत में ही रहता है, और उसको सारा वक्त ये कसक होती रहती है, देखो इन्होंने माना नहीं मुझे, देखो इन्होंने कुछ समझा नहीं, देखो कैसे हैं लोग। फिर वो इंसान रोता है, हाय मतलबी दुनिया है, मतलबी लोग हैं। क्यों इस तरह कहते हैं? इसलिए क्योंकि जब उनके साथ अच्छा किया और उन्हीं से सिला चाहा, तो उन्होंने तो नहीं सिला दिया, तो वो मतलबी हो गए। अगर बेनियाज होते उनसे तो खुश रहते, उसके साथ भी किया, उसके साथ भी किया, उसके साथ भी किया, और अल्लाह से तवक्को लगाई, और अल्लाह उससे भी ज्यादा बेहिसाब देता चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह जालना मिन्हु, जो खर्च करते हैं, कुछ भी खर्च करते हैं, तो वो फिर उसके बाद ये काम नहीं करते, और उनका अजर अल्लाह के पास है। एक वाक्या मैंने किसी का पढ़ा था, बहुत ही प्यारा वाक्या था। उसने कहा कि उसका एक कोई अरब का वाक्या था, उसने कहा मेरा एक दोस्त था, उसका पता चला कि वो फौत हो गया, ये बहुत पुरानी बात है, तो फौत हो गया तो पता चला कि उसने बड़ा कर्जा छोड़ा, कोई 3 लाख के करीब कोई कर्जा था। उसने कहा मैं उसके जो जो कर्ज हुआ था ना, वो मेरे पास आया और उसने कहा चलो इसके बेटों के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि इसके ऊपर कर्जा था तो मेरा कर्जा तो लौटा दे। जब वो उसके बेटों के पास गए तो उन्होंने कहा इसने तो छोड़ा ही 4 लाख है, उनमें से अगर 3 लाख तो हम इसको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमने कुछ नहीं देना। तो ये वो तो चला गया जिसका कर्जा था, लेकिन ये जो दोस्त था इसको बड़ा दिल के अंदर वो रही कि किसी किस तरह मैं अपने दोस्त का कर्जा मैं ही अदा कर दूं, ये तो कितनी मुसीबत में फंस गया होगा अल्लाह के हाँ, और इसके बेटे तो देने पे राजी नहीं है। तो जानते हैं उसने क्या किया, उसने अपनी दुकान बेची, अपना जो भी माल था वो सब बेचा, और वो 3 लाख जो थे वो उसके पास ले गया जिसके जिसका कर्जा था, और उसको कहा कि ये मेरे दोस्त का ने कर्जा तुमसे लिया था, मैं लौटाने के लिए आया। उसने कहा तुम कैसे लौटा रहे हो। उसको पता चला कि इसने तो अपनी दुकान भी बेची, अपना सारा माल भी बेच दिया और उससे ये पैसे लेकर आया। उसने कहा तुम्हारी इतनी अच्छी नीयत है ना, तो मैं सिर्फ 2 ही लाख लूंगा, मैं 3 नहीं लेता, मैं 1 लाख माफ कर देता हूँ उसको। उसने 2 लाख ले लिए। अब ये आया, अल्लाह ताला देखें दुनिया में भी किस तरह नवाजता है। उसने कहा कि मैं आया और मैं मेरे घर पे कोई आया, चंद दिन बाद ये बात फैल गई लोगों में, उसने बता दिया और दूसरों को भी। तो एक ताजिर आया और उसने कहा कि फलां जगह पे हमारी दुकान है, एक दुकान तुम्हारे लिए है, तुम उसके अंदर अपना रखो और तुम बेचो जो। उसने वो दुकान ले ली। कहता है एक दिन एक ट्रक सामान का भरा हुआ आया, एक लड़का साथ था। उसने कहा मेरे बाप ने ये भेजा है, उसने कहा ये आपके लिए, आप अपनी दुकान में रखें और बेचें। कि वो लोगों ने, यानी अल्लाह ताला फिर इस दुनिया में भी ना लोगों के दिलों के अंदर डाल देता है। जब इंसान अल्लाह की खातिर कुछ करता है ना, किसी से भी खैर ख्वाही की सिर्फ अल्लाह की खातिर, अल्लाह ताला वो बंदा तो फौत हो चुका है, उसने क्या इसको आके देना था, वो तो कुछ भी नहीं दे सकता था, ना कोई अप्रिसिएशन दे सकता था, ना कुछ, ना भी उसका करता, इसके कोई सर पे तो नहीं चट्टी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे अप्रिशिएट किया, जो चीज अल्लाह की खातिर किसी को दी जाती है, तो फिर अल्लाह ताला देखें कैसी कदरदानी करता है। कौन है दुनिया में जो इस तरह 700 गुना दे और उससे भी ज्यादा दे, लेकिन अल्लाह ताला कितना कदरदान है, अशकूर, कि अल्लाह ताला जो कदरदानी करता है ना वो बंदे नहीं कर सकते। एक एक लम्हे की अल्लाह कदरदानी करता है जो आप अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं। वो माल की एक दाने की इतनी कदरदानी करता है, तो आप 1 घंटा या 1 मिनट लगा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं अल्लाह इसकी कदरदानी ना करेगा, ये जाया नहीं जाते, यही तो है जो बच गया, यही बचा लिया आपने जिंदगी से, बाकी सब जाया। कौलुम मारूफ व मगफिरतुन खैरुम मिन सदकतिन यतबाउहा अदा। अल्लाह ताला ने फिर बता दिया कि अगर सदका ऐसा ही देना ना कि उसके बाद अजियतनाक चीजें करो, तकलीफ दो लोगों को, तो उससे बेहतर है कि तुम अच्छी बात कर लो या बख्श दो, बख्शिश या दरगुजर करना, ये बेहतर है। यानी ऐसा सदका फिर ना ही दो तो अच्छा है जिसके पीछे तुमने अजियत लेकर आनी, जिसके पीछे तुमने तकलीफ दे बातें लोगों को सुनानी, उनको हर्ट करना है, उसके बाद वो बेचारा उसका दिल कट जाता है, तुम इससे बेहतर है साहिल को कुछ ना दो और उसको कोई भली बात कह दो, बाद में जो उसको जलील करना, बाद में जो उसको ताने देने, बाद में जो उसको रुसवा करते फिरना है सारी दुनिया में, इसको हमने इतना दिया था, हमने तो इनके साथ ऐसे किया था वो जो, और यहाँ इसको खुद ताने सुनाने हैं, तो बेहतर है कि फिर तुम अच्छे तरीके से माजरत कर लो। फिर इसका मतलब है कि जो बंदा ऐसा है ना उसके अंदर गट्स नहीं है कुछ बड़ा काम करने के, किसी को देने के, तो फिर वो बेहतर है कि उससे छोटी नेकी कर ले, कौलुम मारूफ, यानी अच्छी बात कह दो, अच्छे लफ्ज कह दो, मगफिरतुन बख्शिश। अगर साहिल जो है वो कुछ मांग रहा है, कुछ गुस्सा दिला रहा है या फिर बार बार आ जाता है, इंसान कहता है ना तो तुम्हारा तो काम ही ये हो गया, पिछली दफा भी मैंने तुम्हें दिए थे इतने, रिश्तेदारों में से बाज दफा आ जाते हैं, कोई ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि ठीक है वो बिल्कुल भूखे नंगे नहीं है लेकिन वो मतलब दरमियाने हैं, उनकी जरूरत भी है, लेकिन पिछली दफा भी उन्होंने कहा था, उस वक्त भी दिया था, अब फिर वो आ गए, तो अब इंसान उनको सुनाना शुरू हो जाता है, नहीं सुनाना नहीं है, माफी मांग लो कि नहीं आप मुझे माफ करें, जैसे हम कहते हैं ना माफ कर दें, वो माफ कर दें आप मुझे कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, या अच्छी कोई बात कह दो, कोई भलाई की बात कह दो, वो बेहतर है, बजाय के बाद में उसको अजियत दो। वल्लाहु गनीयुन हलीम, याद रखना तुम्हारा मामला किसके साथ है, गनी के साथ है, जिसको जिसके लिए देना है ना वो गनी है, वो कोई तुम्हारा मोहताज नहीं है पैसों का, वो जिसके नाम पे देना, सोचो वो जात कितनी बड़ी है, तुम इसको नहीं दे रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया ना फअम्मा साइलु फला तनहर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जो साइल आए उसको झिड़कना नहीं, अगर दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते तो झिड़को ना, और उसको इनकार भी करो तो अच्छे तरीके के साथ करो, अच्छी बात करके करो, और ये समझो कि ये तुम इसको नहीं कह रहे हो, ये उस रब को तुम जवाब दे रहे हो, अल्लाह को जवाब दे रहे हो। देखें, एक जमाना ऐसा आएगा हदीस के मुताबिक जब इंसान अपना सदका लेके घूमेगा और सदका लेने वाला कोई नहीं होगा। वो कहेगा मेरा सदका ले लो, ये नेकी उठ जानी है एक जमाने में। तो लोग कहेंगे, जिनके पास भी जाएगा वो कहेंगे कल आते तो हम ले लेते, आज तो हमें जरूरत नहीं। और आज तो हम बड़ी अच्छी तरह ये बात समझ सकते हैं कि जिस चीज को हम कहते हैं ना, ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, वो सारी चीजें ही हो रही हैं जिनको बड़ी बड़ी चीजों को हमने सोचा था, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं कभी हो सकता। इसी तरह हम सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, पता नहीं लोगों ने हमेशा ही हमसे मांगते ही रहना है, पता नहीं मस्जिदों वालों ने भी हमेशा मांगते ही रहना है, पता नहीं ये अस्पतालों वालों ने, ये मदरसों वालों ने, ये और इदारों वालों ने, या ये गरीब मिस्कीनों ने, पता नहीं हमारी जान ही नहीं छोड़नी। हमने तो पता नहीं हमेशा ही लोग हमेशा मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते। इससे तंग ना हो, ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है, ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ऊपर वाला हाथ दिया। इससे तंग नहीं आना चाहिए, कौल मारूफ भली बात कह दो या फिर बख्शिश दरगुजर। तो तंग आके इंसान ये जाहिर करता है कि मैं बड़ी चीज हूं ना, तो मैं तो थक गया हूं देते हुए। नहीं, तो अल्लाह गनी है, जिसके लिए तुम दे रहे हो वो तुम्हारे पैसों का मोहताज नहीं है, ये तो उसने तुम्हें नेकी का मौका दे दिया। और वो हलीम है, वो बुर्दबार है, तहम्मुल वाला है, तुम्हारी ये हरकतें देख के भी वो दरगुजर कर देता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जो भी खर्च करें वो ऐसा खर्च करें कि उसके बाद ना कोई अजियत दे ना कोई एहसान जताए। अल्लाह ताला हमसे वो खर्च कराए कि जिससे वो राजी हो जाए, और वो खर्च हो जो महफूज रहे हमारा कयामत के दिन तक, और हम अपने अमल से ही अपनी ही फजूल हरकतों से उसको जाया ना कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.